ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है।
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है।
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
तो कल हम आपसे बात कर रहे थे कि हमारी आर्टरीज कैसे ब्लॉक होती हैं, है ना। धीरे धीरे आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, और आर्टरीज ब्लॉक होते होते बचपन से ब्लॉक होना शुरू होती हैं, एक दो साल की उम्र से ब्लॉक होना शुरू होती हैं, और जब वो ब्लॉक बढ़ते बढ़ते 70% हो जाता है तो हमें छाती में दर्द होता है, या घबराहट होती है, या सांस फूलता है, या तकलीफ महसूस होती है। और 70% ब्लॉक होने के समय लगभग हमारे कोलेट्रल्स खुलने शुरू हो जाते हैं, और कोलेट्रल्स खुलने शुरू होते हैं, और कोलेट्रल्स के खुलने से हमारी ब्लड सप्लाई वापस नॉर्मल हो जाती है, और फिर ब्लॉक बढ़ता रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारी आर्टरीज, कई बार आप एंजियोग्राफी कराते हैं, पहली बार आप एंजियोग्राफी कराते हैं, जब एंजियोग्राफी कराते हैं हम अपनी, तो उसमें देखा जाता है, और हमारी एंजियोग्राफी हमने किसी कारणवश नहीं कराई, सिर्फ एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप जो होता है साल में एक बार कराते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो काम करते हैं एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो उनका हर साल चेकअप होता है, टीएमटी भी होता है, एको भी होता है। टीएमटी हर साल नेगेटिव निकलता है, कि तो इस साल किया तो पॉजिटिव निकला है, पॉजिटिव निकला तो डॉक्टर ने कहा एंजियोग्राफी कराई, तो एंजियोग्राफी कराई, कोई तकलीफ नहीं है, रोज हम नॉर्मल हैं, रोज सब काम करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, रोज वॉकिंग भी करते हैं, लॉन टेनिस भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। कि तो एंजियोग्राफी कराई तो पता लगा एक आर्टरी 100% बंद है, एक 80% बंद है, एक 70% बंद है, तीनों बंद है, कोई तकलीफ नहीं थी, सिम्टम कोई था ही नहीं, और तीनों आर्टरी बंद है, और डॉक्टर कहता बाईपास कराना पड़ेगा। तो कैसे ऐसा हुआ कि उस पेशेंट को कोई सिम्टम ही नहीं है, कभी छाती में दर्द ही नहीं हुआ है, कभी हार्ट अटैक हुआ ही नहीं है, फिर भी तीनों आर्टरी बंद है, तो कैसे हुआ? धीरे धीरे यही प्रोसेस है ना, ब्लॉक होता गया, कोलेटरल्स खुलते गए, उसकी डेली एक्सरसाइज करता है, वॉकिंग करता है, खुश रहता है, रीजनेबली खुश रहता है। एक होता है क्रिटिकल लेवल से अधिक खुश रहता है, ठीक है, मतलब, और उसको सब ठीक है, बैलेंस में चलता है लाइफ उसकी, तो उसके ब्लॉक होने के बाद भी उसको कोई सिम्टम नहीं है, ठीक बात है। तो ब्लॉकेज का मतलब सिम्टम नहीं है, ब्लॉकेज का मतलब हार्ट अटैक भी नहीं है, ब्लॉकेज का मतलब सिर्फ एक प्रोसेस है कोलेस्ट्रॉल जमा होने का, इसलिए ब्लॉकेज वालों को डरने की बात नहीं है, ठीक है। और मन के बारे समझ गया, मन के बारे में बचपन से हमारे अंदर नेगेटिव बातें भरती गई हैं, भरती गई, भरती गई हैं, और अब कुछ समय से क्या हो गया, ओवरफ्लो हो रहा है ना। जो बड़ी बड़ी बातें भी सहन हो जाती थी पहले, अभी छोटी बातें भी सहन नहीं हो रही हैं। कारण क्या? क्योंकि अंदर से पूरा ऊपर तक भर गया है, अब छोटी सी बात भी ओवरफ्लो होकर हार्ट पे असर कर रही है, किसी के हार्ट पे असर कर रही है, किसी के और अंग पे असर कर रही है, जो भी उसका अंग टारगेट ऑर्गन है वो असर, उस पर असर उसका हो रहा है। और साथ साथ जब भी वो बात, कोई भी बात आती है, तो उसकी जैसी बहुत सारी बातें जीवन में पहले हो चुकी होती हैं, वो फाइलें भी खुल जाती, जैसे वायरस आने पर, कंप्यूटर में वायरस आने पर फाइलें खुलती है ना अपने आप ही, उस तरह से फिर वापस फाइल्स खुलती जाती हैं। तो ये तो कल का आपका रिवाइज हो गया, अभी हम आपसे बात करेंगे। ये जो हमने कल आपको दिखाया था, ये आपको डायग्राम याद है, नॉर्मल हार्ट की आर्टरीज इलास्टिक हैं, जब उन पर प्रेशर पड़ता है, जब उनको हमें ज्यादा काम करना पड़ता है फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, तो वो डायलेट हो जाती हैं। नॉर्मल हार्ट की ब्लड सप्लाई 250 ml पर मिनट होती है, किंतु इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी कितना जा सकता है हार्ट में, 1500 ml भी जा सकता है, किंतु अगर आपकी आर्टरीज नॉर्मल है, देखा होगा इसलिए आपने, कई बार हम कितना काम कर लेते हैं, बच्चे कितना काम कर लेते हैं, क्योंकि इनकी हार्ट की आर्टरीज नॉर्मल है, कितना दौड़ते हैं तो भी थकते नहीं है, पहाड़ी पर चढ़ेंगे उतरेंगे भागेंगे दौड़ेंगे कुछ भी करेंगे थकते नहीं, और हम ऐसा कर सकते हैं, हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम गया है एंड दे बिकम लाइक प्लास्टिक, हार्ड हो गई हैं, स्टिफ हो गई हैं, और जब भी डिमांड बढ़ती है, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस बढ़ती है, तो डायलेट नहीं होती, इसलिए हमको छाती में दर्द, घबराहट होती, थक जाते हैं, सांस फूलना शुरू हो जाता है या धड़कन होनी शुरू हो जाती है। अगर ये क्रैक हो जाए आर्टरी, 70% होने पर एंजाइना होता है, और क्रैक हो जाए, और क्रैक अधिकतर यहां होती है शोल्डर ऑफ द प्लाक, जहां पर जंक्शन होता है ना, जहां पर नॉर्मल आर्टरी और ब्लॉक आर्टरी का जंक्शन, उसके नजदीक कहीं पर अधिकतर क्रैक होता है, और क्रैक होके वहां क्लॉट बन जाता है, क्लॉट बनने से हार्ट अटैक, 100% ब्लॉकेज, सडन 100% ब्लॉकेज, सडन 100% ब्लॉकेज, अचानक एक आर्टरी अगर 100% ब्लॉक हो जाती है तो उसको हम कहते हैं क्या, हार्ट अटैक। धीरे धीरे अगर आर्टरी बंद होती है तो उसको, उससे हार्ट अटैक नहीं कहते हैं, राइट। अगर एक आर्टरी 70 से 80 हुई, 80 से 90 हुई, 90 से 100 हुई, तो उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा, किंतु सडनली किसी की आर्टरी में सिर्फ 50% ब्लॉक हो, ऐसा भी हो सकता है 50% ब्लॉक हो, और 50% ब्लॉक में अगर क्रैक हो जाए, और क्रैक होकर के क्लॉट बन गया, क्लॉट बन के आर्टरी सडनली 100% बंद हो गई, हार्ट अटैक हो जाएगा। 30% ब्लॉक में भी हार्ट अटैक आ सकता है, 20% ब्लॉक में भी हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मस्ट नहीं है कि आपको 20% में हार्ट अटैक नहीं आएगा, 30 में भी आ सकता है, 40 में भी आ सकता है, 50-60 में भी आ सकता है, 70-80 में भी आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। अब ये दिखाया गया है, अब हम आर्टरी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये आर्टरी का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, क्रॉस आर्टरी क्रॉस काट के बताया गया है। ये देखिए, तीन लेयर्स हैं आर्टरी में, एक बाहर की लेयर है जिसको एडवेंटिशियल लेयर कहते हैं, ये बाहर की लेयर है, एक बीच की लेयर इसको मसल लेयर कहते हैं, मस्कुलर लेयर कहते हैं, और एक अंदर की लेयर इसको एंडोथीलियल लेयर कहते हैं, इंटीमा कहते हैं, इंटीमा या एंडोथीलियल लेयर। तो तीनों को अलग अलग काम है, बाहर की तो बाहर की फाइब्रस टिश्यू की बनी लेयर है, बाहर की आर्टरी उसको मतलब एक स्टेबिलिटी देती है। ये मस्कुलर लेयर जो है ना, मस्कुलर लेयर का क्या काम है कि आर्टरी को डायलेट करना, मैंने बताया ना आपको, अगर आर्टरी को खोलना हो, चौड़ा होना हो, तो क्या करेगा, किससे डायलेट होगी, इससे डायलेट, इसके ऊपर हार्मोन्स का असर होता है ना। मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो क्या होगा, ये मसल लेयर डायलेट हो जाएगी, ये मसल फाइबर रिलैक्स हो जाएंगे और खुल जाएंगे, तो नॉर्मल छोटी सी आर्टरी भी आपकी बढ़कर के डिमांड के समय, मान लीजिए आर्टरी का डायमीटर अभी 3 मिलीमीटर है या 2 मिलीमीटर है, और जब भी डिमांड बढ़ गई तो ये कितना हो जाएगा, 4 मिलीमीटर भी हो सकता है ना। तो बीच की लेयर जो मस्कुलर लेयर है वो ये काम करती है, ठीक है, हार्मोन्स की रिस्पॉन्स में या डिमांड की रिस्पॉन्स में ये आर्टरी हमारी डायलेट हो सकती है मस्कुलर लेयर की वजह से। फिर है इंटीमल लेयर या एंडोथीलियल लेयर, इसको एंडोथीलियम कहते हैं। एंडोथीलियम क्या करती है, एंडोथीलियम ये जो है इसके डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टेक्ट में रहती है। हमारे हार्ट में, इसे आर्टरीज में क्या बेहतर रहता है, ब्लड बेहतर रहता है, और ब्लड इज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम। ब्लड क्या है, ब्लड इज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम, ब्लड में सब कुछ जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है ना। आरबीसी क्या होती है, ऑक्सीजन ले जाने वाली कणिकाएं होती हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी बीमारी से लड़ाई करने वाली कणिकाएं होती हैं खून के अंदर, है ना। इसके अंदर ग्लूकोज भी जाता है ना। फैट के पार्टिकल्स, फैट के पार्टिकल्स किस फॉर्म में जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, है ना। कोलेस्ट्रॉल कितने तरह का होता है, वैसे कोलेस्ट्रॉल बहुत तरह का होता है, और सबसे बड़ा जो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल का पार्ट है वो है एलडीएल। एलडीएल माना बैड कोलेस्ट्रॉल, उसका नाम है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन दैट्स अ बैड। क्यों बैड है? ये जो पीले वाला देख रहे हैं ना आप, दिस इज द येलो वन, येलो वन इज एलडीएल, ठीक है, येलो वन इज एलडीएल एंड इट इज बैड। व्हाई इट इज बैड? बिकॉज इट ब्लॉक्स द आर्टरीज, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये आर्टरीज की दीवार पे चिपक जाता है, इट गेट्स इन टू द वॉल ऑफ द आर्टरीज, ठीक है। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, एचडीएल इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जो एचडीएल है दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल, और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? हनुमेश भाई इधर आ जाओ, ये तो यहां पे इधर आ जाओ पास में, यहां भी बैठ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, इस बीच में आ जाइए। तो एचडीएल जो है, एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल, है ना। तो वो गुड क्यों है? क्योंकि गुड इसलिए है, प्लीज अपने मोबाइल्स का मैंने कहा था, फिर मोबाइल ले लिया जाएगा आपसे, हमें फ्री आपका एक मोबाइल, ऑफ कर दीजिए उसको, उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ कर दीजिए। तो ये जो एचडीएल है, एचडीएल व्हाई इट इज कॉल्ड गुड? बिकॉज इट अनब्लॉक्स द आर्टरीज, है ना। ये क्या करता है? अंदर से आर्टरीज को साफ करता है, जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को भी साफ करता रहता है। इट डज नॉट अलाउ द कोलेस्ट्रॉल टू बिल्ड अप इन द आर्टरीज, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा तेल जो होता है ना, तेल जो होता है, तेल कपड़े पे लग जाए तो क्या होता है? कपड़ा खराब करता है। और साबुन क्या होता है? साबुन साफ करता है। पर साबुन किस चीज से बनता है? साबुन किस चीज से बनता है? वो भी तेल से बनता है ना। तो एक तेल है कपड़ा खराब करने वाला, एक तेल है कपड़ा साफ करने वाला, ठीक है। ऐसा होता नहीं होता है? इसी तरह से एक कोलेस्ट्रॉल है आर्टरीज को ब्लॉक करने वाला, और एक कोलेस्ट्रॉल है आर्टरीज को साफ करने वाला, है ना। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल जो है, दोनों के दोनों कोलेस्ट्रॉल कहां से आते हैं वो मैं बाद में बताता हूं। एक तीसरा फैट है वो ट्राइग्लिसराइड, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड है स्टोरेज फैट, जो हमारे यहां पर पेट पर, थाइस पर, बॉडी पर ऐसे जमा होता है, वो स्टोरेज फैट है। तो एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड इज स्टोरेज फैट, ठीक है। तीन ही कोलेस्ट्रॉल हमको याद करने हैं, ठीक है। नॉर्मली जो एलडीएल का लेवल है, नॉर्मली भारतवासियों के लिए इट शुड बी लेस देन 100, ठीक है। हमारे सबके लिए एक मोटी बात याद करें, हमें बहुत गहराई में नहीं जाने की आवश्यकता है, रेंज की भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा टोटल जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 100 के नीचे होना चाहिए, 100 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। और गुड कोलेस्ट्रॉल 45 से अधिक होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स 140 के नीचे होना चाहिए, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज है वीएलडीएल, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो 30 के नीचे होना चाहिए, 30 के नीचे होना चाहिए। और रेशियो, रेशियो ऑफ बैड टू गुड, एलडीएल टू एचडीएल शुड बी लेस देन 3, अर्थात एक एचडीएल का मॉलिक्यूल है वो 3 एलडीएल के मॉलिक्यूल को साथ में रख सकता है पकड़ के। इट विल नॉट अलाउ द एलडीएल टू गो इनसाइड इफ वी कीप द रेशियो बिलो 3। हां जी, नहीं उस रिपोर्ट को मत जाइए जो मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर द इंडियन गाइडलाइंस। ये जो है लेबोरेटरी की गाइडलाइंस होती है, लेबोरेटरी के अपने मशीनों के ना जो रेंज होती है उस पर आपको नहीं जाना है, वो रिपोर्ट में देखना नहीं है। रिपोर्ट में जो रेंज लिखी होती है उस रेंज के ऊपर नहीं मत जाइए। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज एक्चुअली नॉट ओनली इंडियन गाइडलाइन बट ऑल्सो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस, ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी। तो दीज आर वेल एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये दीज आर इंटरनेशनल गाइडलाइंस, WHO गाइडलाइंस, राइट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस। टोटल कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 200, LDL should be less than 100, HDL should be more than 45, triglyceride should be less than 140, VLDL should be less than 30, ठीक है? और एक हो गया हमारा रेशो, रेशो बैड टू गुड, LDL टू HDL should be less than 3. इतना याद कर ले तो भी अच्छा है. एक और रेशो याद कर सकते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल टू HDL रेशो, TC ऑब्लिक HDL should be less than 4.5. ठीक है? इज दैट क्लियर? समझ में आ गई ये बात आपको? हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए, LDL 100 से कम होना चाहिए, HDL 45 से अधिक होना चाहिए, और बहनों में 55, बहनों माताओं में 55 से, HDL जो है बहनों माताओं में ज्यादा होना चाहिए, मेल्स में 45 या उससे अधिक, और बहनों में या माताओं में, फीमेल्स में 55 या उससे अधिक होना चाहिए. ठीक है? ट्राइग्लिसराइड 140 से कम होना चाहिए, VLDL 30 से कम होना चाहिए, और रेशियो ऑफ बैड टू गुड LDL टू HDL 3 से कम होना चाहिए, और टोटल कोलेस्ट्रॉल टू HDL शुड बी लेस देन 4.5. ठीक है? इज दैट क्लियर? समझ में आ गई ये बात आपको? पक्का हो गया कि अंदर से रट्टा होना चाहिए. अब देखिए, एक मैं आपको कुछ सिचुएशंस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं. मान लीजिए आपका LDL सिर्फ 100 है और HDL आपका 30 है, तो क्या होगा? कितना रेशो हो गया? 3.3 हो गया ना? खतरनाक है. LDL आपका 90 है किंतु HDL 25 है. LDL तो ठीक हो गया किंतु HDL बहुत कम है, तो भी कितना हो? खतरनाक हो गया ना? 3 से अधिक हो गया ना? 25 से करो तो 3 point something हो गया, है ना? तो इस तरह से अगर ऐसा हो, 100 हो और ये 50 हो HDL, तो दो रेशो हुआ, सेफ है. 100/45 हो गया तो सेफ है, है ना? अगर 120 है आपका HDL LDL और ये 60 है, तो भी अच्छा है ना? प्रेफरेबली 100 के नीचे हो तो LDL अच्छी बात है, किंतु अगर आपका HDL कई बार अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, तो फिर भी इतना खतरा नहीं होता. ये देखने में है, जिनका HDL लेवल कम होता है 45 के नीचे, उनको हार्ट अटैक होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं. ठीक है? अब HDL और LDL में क्या फर्क है? जो LDL है ना, वो लो डेंसिटी है. लो डेंसिटी का मतलब क्या है? वो फ्लफी है. फ्लफी माना लो डेंसिटी. डेंसिटी माना जैसे रुई है ना, रुई कॉटन, वो लो डेंसिटी है. और लोहा क्या है? हाई डेंसिटी है. तो जो फ्लफी चीज होगी वो क्या होगी? चिपक जाएगी ना. और जो हाई डेंसिटी होगा वो बहता रहेगा, है ना? मतलब खून में जैसे वो जमेगा नहीं, ऐसे फालतू नहीं जमेगा, है ना? बल्कि वो सफाई करने काम आएगा, है ना? तो लो डेंसिटी चीजें चिपक जाती हैं और हाई डेंसिटी चीजें नहीं चिपकती हैं. अब हम उस चित्र पर आ जाएं. वहां हम देख रहे हैं, ये एंडोथीलियम है और ये हमारा LDL है, और ये ग्रीन वाला देख रहे हैं सिंगल वाला जो मॉलिक्यूल, ये HDL है जो, और ये हमारी एंडोथीलियम है. लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि LDL और HDL कहां से आता है. पहली तो बात हमें समझनी है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए फालतू चीज नहीं है. कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए फालतू चीज है कि खून में क्या? इट इज नॉट वेस्ट. कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोलेस्ट्रॉल से हमारी सेल्स की दीवारें बनती हैं, जो हमारी बॉडी सेल्स से बनी, कोशिकाओं से बनी है. जैसे बताया होगा आपको पहले, 70,000 billion सेल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है. 70 to 80,000 billion सेल्स. पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 700 करोड़ से कम, मतलब 7 बिलियन से कम. और हमारी बॉडी में कितनी पॉपुलेशन है? 70 to 80,000 billion. और हर सेल जिंदा है, हर सेल सांस लेती है, हर सेल उसको ऑक्सीजन लेगी, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगी। हर सेल को ग्लूकोज चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स सब कुछ चाहिए, उसको यूज करती है, यूज करके फिर टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। तो हर सेल जिंदा है और हर सेल में को एनर्जी भी चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, हमें प्रोटीन जो बताया मैंने सारी चीजें इस तरह से चाहिए। तो 70 to 80,000 billion सेल जिंदा हैं और वो कार्य कर रही हैं। इसी तरह से हमारी जो जो हमारी आर्टरीज जो ब्लॉक होती है, तो कोलेस्ट्रॉल इज ए गुड थिंग, इसे येलो रंग का होता है यूजली, इससे येलो कलर, जैसे एलडीएल स्पेशली येलो कलर का होता है, और इससे हमारे हार्मोन्स, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स इससे ही बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, सेल्स की दीवारें बनती हैं, और भी बहुत सारी जगह ये यूज होता है, इट्स नॉट ए वेस्ट थिंग। कई बार कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बॉडी में हो ही ना हो, ऐसा नहीं, कोलेस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बहुत लो हो जाए, रिसर्च में पाया गया बहुत लो होने पर आपके अंदर इरिटेशन आती है, आपकी इरिटेबल नेचर बन जाती है, होमिसाइडल झगड़ा करने वाली टेंडेंसी बन जाती है, होमिसाइडल टेंडेंसीज बन जाती है, कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है। तो कोलेस्ट्रॉल एक मन से पहली बात निकाल दीजिए, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड, ऑल कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड, ठीक है, ओके, यस ब्रदर, ठीक है। हां, कोलेस्ट्रॉल दो तरह, तीन तरह का बताया, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स। तो 25% कोलेस्ट्रॉल खाने में आता है, कहां से आता है, खाने में से। उस खाने में 25% कोलेस्ट्रॉल जो आता है वो कहां से आता है, जो एलडीएल कहां से आता है, एलडीएल आता है पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाई, स्वीट्स, यू नो, ऑल फ्राइड फूड्स एंड फास्ट फूड्स, दे कंटेन बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयां, आइसक्रीम्स, हमबर्गर्स, पिज्जा, चिप्स, है ना, जो पापड़ तल के खाते हैं ये, पूरी, है ना, ये सब चीजें क्या है, एलडीएल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। सभी खाते हैं ना, सभी ने खाया है ना, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। और गुड कोलेस्ट्रॉल कहां से आता है, गुड कोलेस्ट्रॉल आता है कहां से, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, फलों से, सब्जियों से, अंकुरित, जो सुबह अंकुरित खाया ना, अंकुरित मूंग, मेथी, चना, गेहूं खाया, उसमें से हरी मिर्च, नींबू, है ना, ये जो आपको खाने को दिया, सुबह आपको बादाम अखरोट दिया खाने को, रात को 5 बादाम भिगोए थे, 1 अखरोट, तो खाने को जो मिला सुबह, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप सभी को। तो एलडीएल 25% एलडीएल कहां से आया, तली चीजों से या फास्ट फूड से, और एचडीएल कहां से आया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, नट्स, है ना, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनसे आता है। और 75% कोलेस्ट्रॉल लिवर में बनता है, 75% कोलेस्ट्रॉल कहां बनता है, लिवर में बनता है। वो कहां से बनता है, वो बनता है मन के हिसाब से। अगर आपके मन में जल्दी है, चिंता है, गुस्सा है, उदासी है, थोड़ी थोड़ी बात पे आपकी नेचर सेंसिटिव हो गई है, थोड़ी थोड़ी बातें आप सोचते रहते हैं, ये कैसे होगा, कैसे चलेगा, ये ऐसा व्यक्ति मुझसे ऐसे ऐसे बात करता है, मेरे साथ ऐसे रहता है, मेरे साथ इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, अपने मन की बातें आप शेयर नहीं करते हैं, है ना, या आपके मन में जॉब स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, या आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका लीवर बैड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। तो बैड कोलेस्ट्रॉल तो बनाएगा, साथ साथ क्या करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनाएगा। लीवर में ही क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं, ब्लड को क्लॉट करने वाले, खून जमाने वाले, थक्का जमाने वाले केमिकल्स बनते हैं, फैक्टर्स बनते हैं, वो लीवर में ही बनते हैं। तो आप डबल नुकसान करते हैं, जब भी आप जल्दी करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं, तो आप डबल नुकसान कर रहे हैं अपने आप को। लीवर बैड कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, साथ साथ ब्लड क्लॉट करने वाले फैक्टर्स भी बना रहा है। इज दैट क्लियर? व्हेन यू आर एंग्री, यू आर इन हरी, यू आर अंडर प्रेशर, यू आर डिप्रेस्ड, यू आर इमोशनल सेंसिटिव, और यू फील आइसोलेटेड, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर लीवर इज मेकिंग बैड कोलेस्ट्रॉल एंड नॉट ओनली बैड कोलेस्ट्रॉल बट ऑल्सो क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. सो योर ब्लड बिकम्स प्रोन टू क्लॉट्स. इसलिए आपका ब्लड जल्दी जल्दी जमेगा, खून जमेगा, खून थक्का जमने की टेंडेंसी हो जाती है. इसकी अपोजिट में अगर आप शांत हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं, जो भी आपको मिला है, क्या कहते हैं कहावत क्या है, समय से पहले नहीं और भाग्य से ज्यादा नहीं. जो भी आपको मिला अपने भाग्य का मिला है और समय पर मिला है. और जो कुछ मिलना है कब मिलेगा, समय पर मिलेगा. कितना मिलेगा, जितना आपके भाग्य में है. दूसरा आदमी हो सकता है, दूसरे आदमी के पास करोड़ों रुपए उसको बेनिफिट हो रहा हो और आपको 5 रुपए भी ना मिल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. दूसरे व्यक्ति को बहुत बहुत प्यार मिल रहा हो, देखो एक हो सकता है आपके लिए इतना सा मीठा शब्द भी ना हो. नहीं, घर में भी आप देखते हैं ना, कई बार पत्नी होती है ना, जो पत्नी होती है तो बच्चों से बहुत प्यार से बात करती है और आपको सदा ही नेगेटिव बोलती रहती है. ऐसे पति भी कई बार करता है ना, सबसे प्यार से बात करेगा किंतु पत्नी से डांट लगाएगा, उल्टी सीधी बातें कहेगा, है ना, उसको बाकी सबसे प्यार से बात करेगा, बाहर अंदर घर में सब जगह प्यार से बात करेगा. नहीं तो हो सकता सबके लिए प्यार है, सबके लिए बहुत अच्छा है, किंतु आपके लिए खराब है ना. तो ये किस कारण से है, आपके अपने भाग्य से है ना, राइट. तो समय से पहले और भाग्य से, एक गीत है ना, सुनो ना आपने, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है. समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है ना. तो ये जो है तेरा, जो तूने किया है वही तेरे को मिल रहा है ना. जो तुमने किया है, जैसा तुमने किया है वैसा तुम्हें मिल रहा है. इसलिए किसी कोई दोषी नहीं है. कई बार हम कहते हैं ना दोषी, ये दोषी है, दोषी ये नहीं है, दोषी मैं खुद हूं क्योंकि मैंने ऐसे कर्म किए. आज मुझसे कोई गलत बिहेव कर रहा है तो क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि मैंने गलत बिहेव किया है पहले, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में किया होगा, कभी किया होगा, कोई गलत काम किया होगा. तो हमको सेल्फ को रियलाइज करने की आवश्यकता है, अपने अंदर जाने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है और उसको ठीक करने की आवश्यकता है. अगर ठीक नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, ठीक ही नहीं होंगे, है ना, बीमारियां बढ़ती, तकलीफ बढ़ती रहेंगी. तो 75% कोलेस्ट्रॉल कहां से बना, लीवर में बना. कैसे बना, मन के हिसाब से. मन के हिसाब से कैसे बना, अगर हमने जल्दी चिंता गुस्सा किया तो बैड बनाया, और मन को शांत रखा, संतुष्ट खुश रहे, प्रसन्न रहे, जो मिला उसमें संतुष्ट रहे, तो क्या होगा, हमारा लीवर गुड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा. और खाली गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता है, साथ साथ में क्या बनाएगा, क्लॉट डिजॉल्विंग फैक्टर्स बनाएगा, क्लॉट बस्टर्स बनाएगा. जो स्ट्रेप्टोकाइनेस का आप इंजेक्शन लगवाते हैं ना, जब हार्ट अटैक होने पर इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो इंजेक्शन अंदर ही बन जाता है. वो 3500 रुपए का इंजेक्शन बाहर से लगवाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे अंदर ही हर समय बनता रहेगा अगर हम शांत खुश रहें तो, कहीं क्लॉट्स नहीं रहेंगे. ठीक है, तो बीमारी कहां से आई, हार्ट की बीमारी कहां से आई बताइए. हाँ, 75% यहां से आई, 25% यहां से आई. ठीक है प्रदीप जी, ठीक बात है. कहां से आई 75%, कहां से आई, यहां से. और 25% कहां से आई, यहां से. और यहां पर भी क्या गया, जो पहले यहां था, है ना, यहां से जो मन में फीलिंग थी उसी हिसाब से खाया ना. कहते हैं मूड डिसाइड्स योर फूड. बहुत सारी रिसर्च हुई है और वो बताती हैं कि मूड डिसाइड्स योर फूड. हम क्या खाना खाएंगे वो कौन डिसाइड करता है, हमारा मूड, हमारा माइंड. जैसे कहा जाता है, ऐसे देखने में आया है, जब कड़वा फील करते हैं, जब हम मन में बिटरनेस महसूस करते हैं, तो हम क्या, हमें हम क्या खाना पसंद करते हैं, मीठा खाना पसंद करते हैं और कंपल्सिवली खाते हैं, डायबिटीज होने के बाद भी खाते हैं, चोरी छिपे भी खाते हैं, चोरी से भी खाते हैं. पता है आपको, उस बात का नहीं पता, डायबिटीज वाले, डायबिटीज वाले सब अनुभवी हैं, आप सब डायबिटीज वाले काफी सारे हैं ना, तो डायबिटीज वालों को पता है इस बात का कि जब हम कड़वा मन झगड़ा हो गया, कुछ बात की टेंशन हो गई, अब कड़वा ऐसी बिटरनेस मन में आ गई, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपको घर में गुलाब जामुन बना है ना, है ना, तो माँ पत्नी ने क्या किया, सब बच्चों को खिला दिया, दो 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 सबको खिलाए, और आपको आपको कहा आपको डायबिटीज, आप नहीं खाना है ना, तो आपने तो खाया, और फिर कुछ ऐसी मन में कड़वाहट है ऑफिस की तरफ से या घर की तरफ से भी हो सकती है, और रात में आपने तो क्या होगा, आपने तो खाया नहीं, तब तो कंट्रोल भी कर लिया, किंतु रात में क्या होगा, रात में यूजली एक बार बाथरूम के लिए उठते हैं ना, एक दो बजे है ना, दो बजे कोई उठता है, और बाथरूम डायबिटीज वाले ज्यादा उठते हैं, है ना, तो रात में उठेंगे, फिर उसको अचानक याद आता है कि मैं ना गुलाब जामुन बना था, है ना, तो क्या करेगा वो, चुपचाप किचन में जाएगा, एक खाएगा पहले, पर हमेशा मीठी मीठी मिठाई होती है ना, एक अंदर रहना नहीं चाहती है, उसको कंपेनियन चाहिए, है ना, अकेला नहीं रहती है वो, तो एक अच्छा लगता है ना, तो थोड़ी मिठास आती है, तो कहती एक और खा लो, चुपचाप देख, कोई देख नहीं रहा है ना, तो फिर दो दो तो खा लिए ना, है ना, और सुबह सुबह जब चेकिंग होती है ना, वो वाइफ उठ के देखती है अब कहाँ गए, ये दो तो कम है इसमें से, कहाँ गए, चार ही बच्चे बचे थे और उसमें दो आप खा गए, है ना, तो फिर क्या होगा सुबह सुबह, तो ऐसे ऐसे अनजान होते हैं जैसे कि बस वो कि मुझे नहीं पता, वो कहे आपने खाया क्या, नहीं मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता, आप बच्चों से पूछो ना, मुझे नहीं पता है। तो ये मतलब बिटरनेस विल लीड टू, उसको कंपनसेट करते हैं फिजिकली मिठास खाके, जब अंदर से ड्राई महसूस करते हैं तो वी ट्राई टू वी फील लाइक टेकिंग फ्राइड फूड, जब अंदर से ड्राई महसूस करेंगे ना आप तो क्या दिल करेगा, भाई आज तो पकोड़े बना लो, आज तो ये कर लो, आज तो पराठा बना के दो, आज तो पूरी बना के खिलाओ, है ना। और जब आप अंदर से बोरिंग महसूस करते हैं तो चटपटा खाने को दिल करता है, हॉट खाने को दिल करेगा, कुछ चटपटा बनाओ आज कुछ, है ना। तो ऐसे मन की बहुत सारी फीलिंग्स के अनुसार हम खाना खाते हैं, है ना? तो ये जो है, ये जो भी हमारे अंदर जाता है वो हमारे मन के हिसाब से जाता है, इसलिए जो हार्ट की जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो टोटली किससे रिलेटेड है, मन से रिलेटेड है। तो अगर आप मन को पूरा ठीक कर सकें तो आपकी हार्ट की बीमारी ठीक हो सकती है, ठीक बात है, कर सकते हैं ठीक, नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारी, और ये दूसरी बात है, अभी आर्टरी तो ये कोलेस्ट्रॉल तो ज्यादा बन गया, ठीक है आपने बना लिया, मन से भी बना लिया और मुंह से खा के भी बना लिया, अब अंदर कैसे जाएगा, अगर मैं नमक को यहां रख दूं तो खून में जाएगा क्या, किंतु कभी जाएगा, अगर स्किन में क्रैक होगा या कोई घाव होगा उस पर नमक रखें तो क्या होगा, खून में जाएगा। इसी तरह से जब तक ये एंडोथीलियम डैमेज ना हो तब तक कोलेस्ट्रॉल अंदर नहीं जाता है, ये जो अंदर की लाइनिंग है डैमेज ना हो, और एंडोथीलियम को डैमेज कौन करता है, जैसे अगर आप एक सिगरेट पीते हैं तो 40 मिनट के लिए हमारी दिमाग डैमेज हो जाती है, 40 मिनट तक कोलेस्ट्रॉल अंदर जाता रहेगा, दीवार डैमेज हो जाएगी, जैसे दिखाया ना यहां से, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइट दिखाए, नेक्स्ट लाइट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो उसमें से 40 मतलब हमारी जो 40 मिनट के लिए होगा, ठीक है। इस तरह से हमारे जो पॉल्यूशन है, डिफरेंट तरह के पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, जैसे देखिए दीवार डैमेज हुई ना यहां से, तो यहां पर से कोलेस्ट्रॉल अंदर जाना शुरू हो जाएगा, ये दिखाया है कोलेस्ट्रॉल अंदर जा रहा है ना ये दीवार में, तो ये एलडीएल अंदर जा रहा है ना, ये एंडोथीलियम है। तो ऐसे ही पोल्यूशन, जैसे हमारे आजकल बहुत सारी ट्रैफिक में बहुत पोल्यूशन रहता है ना, तो उस समय भी हमारी जब हम पोल्यूशन के अंदर जाते हैं तो हमारी वो आर्टरीज के अंदर वो दूसरी अमोनिया गैस है, मीथेन गैस है, दूसरी और भी सल्फर डाइऑक्साइड है, वो गैसेज जाती है, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल अंदर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और भी फूड में कुछ ऐसे जो हम लोग यूज करते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, बेंजाइल बेंजोएट है और बहुत सारी बातें होती हैं जो हम जो फूड में डाली जाती हैं, जैम्स में डाली जाती हैं, जितने भी कैंड फूड्स आते हैं उनके अंदर डाली जाती है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, और भी जो खाद डाली जाती है खाना बनाते समय, खाना को जब वो सब्जियों को उगाते हैं, तो वो सब भी क्या करते हैं, एंडोथीलियम को डिस्टर्ब करते हैं, खराब करते हैं, एंडोथीलियम को डैमेज करते हैं। तो ये तो कुछ फूड चीजें हो गई जो थोड़े समय के लिए डैमेज, कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए डैमेज करते हैं। कि तो देखने में आया है, जब आप एक बार गुस्सा करते हैं तो एक बार का किया हुआ गुस्सा 72 घंटे तक आपकी दीवार को डैमेज करता है। कितनी देर डैमेज करता है? 72 आवर्स तक। अगर एक बार आपने गुस्सा किया तो 72 घंटे तक वो दीवार क्या होगी? कोलेस्ट्रॉल के लिए फ्री मीडियम बन जाएगी। कोलेस्ट्रॉल एंटर करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। अगर एक बार आपने जल्दीबाजी की, जल्दी प्रेशर टाइम के प्रेशर में आ गए तो 18 घंटे तक आपकी दीवार डैमेज होती रहेगी। एक बार प्रेशर में आए तो चिंता की तो लगभग वो भी 18 घंटे है, और उदास एक बार हो गए तो 5 दिन के लिए आपकी दीवार डैमेज हो जाएगी। उदास एक बार नहीं, मूड ऑफ कर लेते ना, जैसे आपने देखा एक बार गुस्सा करने से इफेक्ट कितनी देर तक रहता है? बहुत लंबे समय तक। हमारा एक एक कैस्केड ऑफ प्रोसेस, कैस्केड ऑफ चेंजेस शुरू होता है बॉडी में, और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे प्रोसेस चलते हैं, हार्मोन्स ऐसे ऐसे एंजाइमेटिक चेंजेस बॉडी में चलते हैं कि वो दीवार डैमेज होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। इसी तरह से इसमें होता है, उदासी में होता है, आइसोलेशन, जब अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपने मन की बातें कह नहीं पाते हैं, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, मन में विचारों का बहुत प्रेशर बन गया है, आपके जो मन में टेंशन हैं, आपकी जो आप कहना चाहते हैं नहीं कह पा रहे हैं अपने मन की बातें, तो प्रेशर बन जाता है, तो वो कितनी देर तक एंडोथेलियम को डैमेज करता रहता है। तो ये जो है मुख्य जो कारण, इसलिए कहते हैं कि हमारे मन की जो बातें हैं वो मुख्य हैं, ठीक है? तो क्या करें, गुस्सा करना पड़ेगा ना, अभी तो करना पड़ेगा ना, चिंता भी करनी पड़ेगी, जल्दी भी करनी पड़ेगी, उदास भी होना पड़ेगा ना। यस ब्रदर, ब्लॉकेज भी होना पड़ेगा, क्या करें? अभी तो आप वो चेंज नहीं करेंगे तो ये तो होना ही पड़ेगा। और जब जब आप चिंता गुस्सा कर रहे हैं, साथ साथ क्लॉटिंग फैक्टर भी बन रहे हैं, तो क्लॉट बनेंगे तो हार्ट अटैक भी होना ही पड़ेगा। नहीं, कहां बच सकते, बच सकते क्या? तो ये है तरीका आर्टरीज के ब्लॉक होने का। तो कितनी मेहनत की है आपने, सोचो जरा, कितने साल दिन रात मेहनत की है आपने? नहीं, बहुत मेहनत करके आर्टरीज ब्लॉक की है, दिन में भी गुस्सा किया तो रात में सपने भी गुस्से के देखे हैं, है ना? सपने भी तो वही आते हैं जो रात में, दिन में काम करते, रात में वही तो आता है ना? नहीं, यहां से भी ब्लॉक किया, यहां से भी ब्लॉक किया, नहीं तो आपने सोचा हार्ट पूरा ठीक खराब करना ही चाहिए, मेरा अपना हार्ट थोड़ी ना, दुश्मन का हार्ट है तो उसको तो खराब कर ही देना, नहीं ऐसा? यस, आइसोलेशन, आइसोलेशन तो एक बार फीलिंग ऑफ आइसोलेशन आ गई तो कितने दिन तक आप जब तक अपने आप को उसमें नहीं लाएंगे तब तक डैमेज ही रहेगा ना, है ना? फीलिंग ऑफ आइसोलेशन तो बहुत लंबा समय चलती है ना, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए ब्लॉक कैसे आर्टरी हो जाती है, कैसे हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट देख कैसे छोटा सा शेक रह जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, ये कैसे कैल्शियम भी जमा हो जाता दीवार के अंदर। नेक्स्ट, तो ये जब 70% ब्लॉक हुई तो एंजाइना हुआ, और जब ये क्रैक हो गया तो क्रैक होने से क्लॉट बना, और क्लॉट बनने से हार्ट अटैक हो गया। और मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, अभी बहुत साफ साफ शब्दों में, अभी तक विश्व में कोई दवाई नहीं बनी है जो क्लॉट को, ब्लॉक को खोल सके। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देता हूं, अभी तक दुनिया में कोई दवाई, होम्योपैथी में, आयुर्वेदा में, एलोपैथी में, या किसी भी सिस्टम में, यूनानी में, किसी भी सिस्टम में ऐसी दवाई धरती पर नहीं बनी है जो कि आपके ब्लॉक को खोल सके। जो कोलेस्ट्रॉल जम गया है उसको बाहर निकाल सके। आप सुनते होंगे कई लोग कहते हैं लौकी का रस पियो तो ब्लॉक खुल जाते हैं, कोई कहते हैं अर्जुन की छाल का रस पियो तो ब्लॉक खुल जाते हैं, कोई कहते हैं प्राणायाम करो तो ब्लॉक खुल जाते हैं, है ना? कोई कहते हैं वो क्या करो तो किलेशन थेरेपी होती है ना, ईडीटी देते हैं उससे ब्लॉक खुल जाते हैं। देयर इज नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू प्रूव के ब्लॉकेज खुलते हैं। साइंटिफिक एविडेंस नहीं है दुनिया में कहीं भी इस बात के बारे में, ठीक है? साइंटिफिक एविडेंस किसे कहते हैं? साइंटिफिक एविडेंस उसे कहते हैं जिसमें हम दो ग्रुप ऑफ पीपल लेते हैं, 50 इस ग्रुप में, 50 उस ग्रुप में, 50 ग्रुप उस चीज को यूज करते हैं। मान लीजिए किलेशन थेरेपी की बात कर रहे हैं, 50 लोगों को किलेशन थेरेपी दी गई, जितना समय बताते हैं उस समय इतना, 50 को नहीं दी गई, और फिर उस समय के बाद एंजियोग्राफी की गई तो इन लोगों में ब्लॉकेज खुले, इन लोगों में नहीं खुले, ठीक है। तो उसको कहेंगे साइंटिफिक प्रूफ कि हां भाई 50 में कैलेशन थेरेपी से ब्लॉकेज खुल गए। नॉर्मली भी 100 में से 6 से 7% ब्लॉकेज अपने आप खुल जाते हैं। कैसे खुलते हैं? क्योंकि ये जो क्लॉट है ना, ये क्लॉट जो बनता है अपने आप डिजॉल्व हो जाता है। मान लीजिए आपने आज एंजियोग्राफी कराई अपनी और वो उसमें दिखाया 100% ब्लॉक है, तो 100% ब्लॉक वो कोई ब्लॉक ब्लॉक की वजह से नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं है। उसमें 70% ब्लॉक तो आपका उसमें था बिकॉज ऑफ ब्लॉक, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और 30% वहां क्लॉट जमा हुआ था, ब्लड क्लॉट जमा हुआ था, और थोड़े दिन में वो क्लॉट अपने आप निकल गया और आपने देखा 100 वाली 70% हो गए। तो इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। वो क्लॉट रिकेनलाइज हो गया, डिजॉल्व हो गया, और उसके कारण से वो कहा कि आपका क्लॉट निकल गया। वो क्लॉट नहीं निकला है, वो ब्लॉक नहीं निकला है, क्लॉट निकल गया। और उसको हम क्या समझ लेते हैं कि हमारा ब्लॉक तो खुल गया जी, ब्लॉक नहीं खुला है, क्लॉट डिजॉल्व हो गया, ठीक है। खून का थक्का था वो पिघल गया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इज इट करेक्ट? तो साइंटिफिक स्टडीज में इन बातों को देखा जाता है। हम एंजियोग्राफी देख के बता सकते हैं कि दिस ब्लॉक इज बिकॉज ऑफ कितने परसेंट ब्लॉक की वजह से, कितने परसेंट क्लॉट की वजह से। जब हम एंजियोग्राफी देखते हैं ना पेशेंट की, तो हम बता देते हैं कि हाँ इतना इतना है ऐसा। उसके अलग तरह की पिक्चर्स होते हैं, कभी डॉक्टर्स ध्यान से नहीं देखते तो उसको 100% ब्लॉक ही लिख देते हैं, 90% ब्लॉक ही लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेटली देखने से हमें सही पता लगता है। सिर्फ आज तक क्लॉट बस्टर्स बने हैं, ये जो क्लॉट बना ना, ये लाल रंग का देख रहे हैं, इसको बस्ट कर सकते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस से, यूरोकाइनेस से, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर से। इसके डिफरेंट डिफरेंट वो जो आप इमरजेंसी में जब कभी आवश्यकता होती तो ये दे सकते हैं, और वो हमारे क्लॉट को बस्ट कर सकते हैं, बट ब्लॉक को कोई चीज निकाल नहीं सकते। क्योंकि ब्लॉक बना कैसे, ब्लॉक कैसे बना, ब्लॉक बना एंडोथेलियल इंजरी हुई, उसमें कोलेस्ट्रॉल अंदर गया, ठीक है। अब मैं एक बात आपको बताऊं, वापस बैक, कैन वी गो टू बैक स्लाइड, बैक, इससे भी बैक, फर्स्ट स्लाइड। क्लॉट तो क्या होता है, क्लॉट तो आरबीसी से बनता है ना, तो उसमें जैसे हम स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है, वो आरबीसी चिपक जाती है दूसरे के साथ, फिब्रिन बीच में होता है, तो वो फिब्रिन के जो बीच में पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक करता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, और क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है ना। क्लॉट तो ब्लड क्लॉट है ना, ब्लड के ब्लड थिक जम गया, थिक यहां भी ब्लड का क्लॉट बन जाता है ना, तो क्या करो आप उसमें थोड़ा पानी से करो तो ब्लड साफ हो जाता है। तो ये जो है अंदर की जो लाइनिंग है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप आज मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट में जा रहे हैं और अचानक रास्ते में अनाउंस हो जाता है, आपको वाइफ ने कहा कि आप ना क्या लेके आना, आधा किलो भिंडी लेकर के आना, थोड़ी सी मिर्च लेकर के आना, थोड़ा सा दो नींबू ले, चार नींबू लेके आना, और थोड़ी सी गोभी ले आना, राइट, पत्ता गोभी थोड़ी सी ले आना, और आधा किलो आलू ले आना, ठीक है। ऐसे बोला ना, एक दो दिन की सब्जी मंगाई ना आपसे, और रास्ते में अनाउंसमेंट हो गई कि अभी अचानक भारत पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया है, एक मिसाइल गिरी है, और भारत में क्या हो गया, इमरजेंसी लागू कर दी गई है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर इमरजेंसी। तो आप क्या करेंगे, रास्ते में थे आप और अनाउंसमेंट हो गई, तो क्या करेंगे आप, क्या घर वापस आ जाएंगे, मार्केट में पहुंच गए लगभग, तो क्या लेकर के आएंगे मार्केट से, हाँ 10 किलो गोभी लेके आएंगे, 10 किलो भिंडी लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा माल लाएंगे, पर कौन सा माल ज्यादा लाएंगे, भिंडी 10 किलो भिंडी लेके आएंगे, 10 किलो पत्ता गोभी लेके आएंगे, वो सब्जी ज्यादा लाएंगे जो सब्जी ज्यादा दिन चले, जैसे आलू है, आलू बहुत दिन चल सकता है ना, है ना, टमाटर लाएंगे जो ताकि लंबा समय, दालें ले आएंगे, दाल ले आएंगे मार्केट से कि दाल बाद में खराब नहीं होती ना, है ना, तो है ना, तो ऐसी चीज लेकर के आएंगे, मतलब और सस्ती भी नहीं, महंगी रेट पर भी लेके आएंगे, है ना, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसा ही हमारी बॉडी में होता है। कोलेस्ट्रॉल तो बहने के लिए है, जमने के लिए नहीं है, कोलेस्ट्रॉल इज ब्लड तो ट्रांसपोर्ट मीडियम है ना, लीवर से बना, लीवर से बनके जहां चाहिए वहां सप्लाई हो रहा है, लीवर से बना यहां पे एड्रिनल ग्लैंड को चाहिए, थायराइड को चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को चाहिए जहां हार्मोन बनने हैं, सेल्स को दीवार बनाने के लिए चाहिए, रॉ मटेरियल लेते हो, है ना, रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है। तो ब्लड में कोई ये था ना, ये नहीं था कि जो कोलेस्ट्रॉल नसों में चिपकने के लिए पैदा होता है, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज सपोज टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये तो यहां ट्रांसपोर्ट मीडियम था और यहां ऐसा हो रहा था, किंतु अभी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। क्या डिक्लेयर हो गई? आपने गुस्सा कर दिया, तो गुस्सा किया तो क्या इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई? गुस्सा माना इमरजेंसी, जल्दी माना इमरजेंसी, चिंता माना इमरजेंसी, नहीं, उदासी माना इमरजेंसी। मिस्टर वशिष्ठ, वशिष्ठ भाई, समझ में आ रही है आपको? तो जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी माना इमरजेंसी। तो जब इमरजेंसी लग गई तो क्या होगा? अंदर से क्या मैसेज आता है? पता नहीं आगे क्या होगा, डर जाते हैं ना अंदर से। ऊपर से मैसेज गया, अंदर ऊपर मैसेज पहुंचता है, अरे सब कुछ गड़बड़ है, पता नहीं अभी क्या होने वाला है। तो हमें सेल्स को तो काम करना है, तो क्या एंडोथेलियम का मैसेज क्या जाता है? जो कुछ भी अवेलेबल है ले लो, खींच लो। तो वो क्या करती है, दीवार क्या करती है, जहां पर डैमेज होता है, हमारे विचार हमारी दीवार को, एंडोथेलियम को डैमेज करते हैं। सारी एंडोथेलियम को डैमेज नहीं करते हैं, जो कुछ एंडोथेलियम, कुछ तरह के विचार एलईडी को डैमेज करते हैं, एलईडी के प्रॉक्सिमल पार्ट को। ये देखिए भाई साहब पीछे, हाँ, अलर्ट होके बैठे अवधेश भाई, हाँ सब अलर्ट है, सीधे होके बैठे। स्टूडेंट कैसे बैठते हैं? हाँ लिखो, भले लिखो पर सीधी कमर, सीधी कमर सीधा रख के बैठे ना। तो एंडोथेलियम को कुछ तरह के विचार, कुछ पार्ट एंडोथेलियम को, जैसे दिमाग है ना हमारा, यहां पर एक स्पीच एरिया है, अगर उसको डैमेज कर दो, जीभ भले हो, मुंह भले, हमारा वोकल कॉर्ड बिल्कुल ठीक ठाक है, तो भी बोल नहीं सकेंगे, आवाज आएगी नहीं यहां से। ये इसका कंट्रोलिंग सेंटर है, यहां डैमेज हो गया तो ये पूरी आवाज चली जाएगी, यहां डैमेज हो गया तो हमारा इसका अपोजिट साइड का हाथ पैर चला जाएगा, इधर डैमेज हो गया तो इस साइड का हाथ पैर चला जाएगा, अगर यहां डैमेज हो गया तो क्लॉट बन गया इस एरिया में, तो आंखें होते भी आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो यहां पर जैसे ब्रेन में डिफरेंट एरियाज है ना, ऐसे ही एंडोथेलियम जो हमारी कॉरोनरी आर्टरीज है, और हमने रिसर्च में पाया है पिछले कुछ सालों में कि कॉरोनरी आर्टरीज के डिफरेंट हिस्से डिफरेंट डिफरेंट तरह के विचारों से डैमेज होते हैं, उनके एंडोथेलियम डिफरेंट डिफरेंट विचारों से डैमेज होती है। तो जहां पर वो विचार डैमेज करेंगे एंडोथेलियम को, वहीं पर ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, वहीं की एंडोथेलियम खराब होकर के और वहां से कोलेस्ट्रॉल को एंट्री देना शुरू कर देगा, तो कोलेस्ट्रॉल जल्दी 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 अंदर घुसना शुरू कर देगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? तो इस तरह से वो जब वैसे हमारे 36 घंटे के लिए इमरजेंसी, 36 घंटा कोलेस्ट्रॉल अंदर जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता रहेगा, और आपने 36 घंटे में दोबारा, 73 घंटे में दोबारा गुस्सा कर दिया तो क्या होगा? फिर डबल डबल स्पीड से अंदर जाएगा, और तीन बार गुस्सा कर दिया तो ट्रिपल स्पीड से अंदर जाएगा, और ज्यादा गुस्सा कर दिया तो चार गुना स्पीड से अंदर जाएगा। तो ये हमने इस तरह से हम खुद ही रेस्पॉन्सिबल है अपने बीमारी के लिए, ठीक है। अरुणा मैन समझ में आई? आपकी ब्लॉक क्यों हुई, आर्टरी ब्लॉक क्यों हुई, किसने ब्लॉक की आपकी आर्टरीज, किसने ब्लॉक की? आपने खुद ने ब्लॉक की है ना, है ना। हार्ट के पेशेंट क्यों बने? क्योंकि आपने खुद अपने आप जल्दी की, गुस्सा किया, चिंता किया, उदास हुए, थोड़ी थोड़ी बात को फील किया, है ना, थोड़ी थोड़ी बात में, फिर उसके हिसाब से जैसे मन की भावना थी उसके हिसाब से फिर गलत खाना खाया, परवश होके खाना खाया, तो धीरे धीरे हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती गई, और ब्लॉक होकर के हम कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए, आज यहां पहुंच गए, है ना? नहीं, इस तरह से हमारी, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और इसकी बजाय हम क्या करें, आज अगर हमने, मतलब हमने दीवार को, हमने एंडोथेलियम को क्या प्रेजेंट किया, जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी प्रेजेंट की, तो क्या किया एंडोथेलियम ने, कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के अंदर डालना शुरू कर दिया। और आज हम एंडोथेलियम को क्या करें, शांति प्रेम खुशी दे दें तो क्या होगा, क्या होगा? जैसे आप मार्केट में अभी अभी ले रहे हैं, अभी आप सब्जी खरीद रहे थे, आपने 10 किलो आलू बोल दिए, 10 किलो आलू दे दे भैया और ये दे दे ना, महंगे रेट पे ले रहे होते हैं ना, और अभी उस पर तोल रहा है वो भाई है ना, अभी आपने पैसे दिए नहीं है और तुरंत अनाउंसमेंट हो जाती है कि नहीं नहीं वो मिसाइल गलती से किसी आतंकवादी ने डाली, पाकिस्तान ने डाली थी और वो आतंकवादी पकड़ लिया गया है ना, और अभी इमरजेंसी नहीं है, थिंग्स आर ओवर है ना, इमरजेंसी इज ओवर, तो क्या करोगे फिर? आलू को क्या बोलोगे आलू वाले को,
10 किलो का 1 किलो
भैया तुम 1 किलो ही लेना है तो 9 किलो वापस रख लो, ठीक है? नहीं ऐसे नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। और दूसरा ऐसे ही मैं एक सिचुएशन आपको और देता हूं, मान लीजिए अभी आपके एरिया में रॉयट हो गया है, ठीक है, हिंदू मुसलमान का एरिया, जैसे अहमदाबाद में जैसे होता है ना, तो हिंदू मुस्लिम एरिया है, पास पास घर हैं और रॉयट हो गया है, और रॉयट होने में क्या हुआ, दोनों कम्युनिटीज क्या कर रही हैं, हिंदू लोग अपनी टोलियां बना करके मुसलमान एरिया में अटैक करते हैं और मुसलमान लोग अपनी एरिया ग्रुप बना करके क्या करते हैं, हिंदू एरिया में अटैक कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे बताइए? अपने घर में आप ड्राइंग रूम में जरा भी अपना ड्राइंग रूम कितना साफ सुथरा रखते हैं, उसमें जरा एक मिट्टी का कण भी आए तो आपको अच्छा नहीं लगता है, बहुत सुंदर फ्रश कराया हुआ है, बहुत सुंदर आपने गलीचा बिछाया हुआ है, बहुत सुंदर आपने ड्राइंग रूम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पैसा खर्च करके आपने ड्राइंग रूम बनाया है अपना, अभी आतंकवाद आ गया है, ठीक है, या आप समझो आपके ऊपर कम्युनल राइट्स आपके एरिया में हो गए, तो क्या करेंगे अपने ड्राइंग रूम में क्या रखेंगे उस समय? पता है कि अचानक दरवाजा खुलवाते हैं, भीड़ की भीड़ रात में आती है, अटैक करती है और सब कुछ लूट के ले जाती है, मार के चली जाती है, तो क्या करेंगे आप अपने ड्राइंग रूम में क्या रखेंगे? उसी ड्राइंग रूम को जिसमें आप जरा भी उसको गंदा नहीं करते थे, उसमें आप क्या करेंगे, पत्थर ईंटे लाठियां है ना रखेंगे, ताकि कोई हमारे ऊपर अटैक करे तो हम क्या करें, कम से कम हम भी तो कुछ मारे ना, नहीं नहीं करते हैं, यूजुअल बात है ये, तो रखेंगे ना अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखेंगे ना कुछ चीजें, तो वो उस ड्राइंग रूम में रखते हैं, बाहर से उठा के सड़क से उठाते हैं, जो गंदे रोड़े ईट रोड़े होते हैं वो भी उठा के आप रखते हैं, छत पे भी रखते हैं जाकर के, है ना? और जब रॉयट खत्म हो गया तो क्या करेंगे, फिर ड्राइंग रूम में सजा के रखेंगे, नहीं कि उस समय हमने यूज किया था, उस समय रखा था तो अभी रखें, नहीं उसको बाहर तुरंत बाहर फेंक देंगे। इसी तरह से जब इंसान, जब हमारे अंदर प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, जो बाहर की चीजें जो हमारे काम की चीज नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हमारे काम की चीज नहीं है, वो उसको हम अंदर एंट्री दे देते हैं, एंडोथेलियम उसको एंट्री देती है, एंडोथेलियम इंजरी होती है इस तरह के विचारों से, जल्दी चिंता गुस्सा उदासी से, और एंडोथेलियम इंजरी होने से कोलेस्ट्रॉल अंदर जाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे हमारी आर्टरी 70% ब्लॉक हो जाती है, 80% ब्लॉक, 90% ब्लॉक हो जाती है। किंतु इसके बाद अगर हम अपने आप को ठीक कर लें, अगर हम अपने आप को इंप्रूव कर लें, अपनी एंडोथेलियम को शांति प्रेम और खुशी दे दें, तो क्या होगा, एंडोथेलियम क्या करेगी? एंडोथेलियम इज नॉट डेड, इट हैज अंडरस्टैंडिंग, उसमें समझ है एंडोथेलियम में, है ना? तो एंडोथेलियम क्या कर सकती है, ये कोलेस्ट्रॉल को अंदर डाल सकती है तो एंडोथेलियम को कोलेस्ट्रॉल को बाहर भी फेंक सकती है, ठीक है, नहीं फेंक सकती तो कोलेस्ट्रॉल वापस बाहर जाना शुरू कर देगा और हमारी आर्टरी धीरे धीरे वापस खुलती जाएगी। तो आपको क्या देना है, शांति प्रेम खुशी कहां से आएगी, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा ना उसका, नहीं खून में सुबह सुबह रोज एक इंजेक्शन लेंगे ना हम लोग, आईवी इंट्रावीनस ना, तो अब सारे एंडोथेलियम में शांति चली जाएगी, प्रेम चला है, खुशी चली जाएगी। मार्केट में ऐसा इंजेक्शन आता है क्या, केमिस्ट की शॉप पे, शांति का 10 ml शांति, 10 ml खुशी, 10 ml प्रेम, नहीं ऐसा इंजेक्शन है प्रदीप जी, राय स्वामी सर, आपके पुणे में मिलता है क्या? तो 10-10 ml का रोज लगवा लो इंजेक्शन, तो अपने आप ही आर्टरी खुलनी शुरू हो जाएगी और क्लेशन थेरेपी से नहीं खुलेगी। हां, अगर आप शांति प्रेम खुशी का इंजेक्शन लगवाएंगे तो खुल जाएगी, तो आपकी एंडोथेलियम। और साथ साथ दूसरा मैंने बताया ना कि साथ माइंड का असर फूड पे भी पड़ेगा, मूड विल डिसाइड योर फूड। जब आपका मन शांति प्रेम और खुशी में रहेगा तो आपको फिर आपको उसके लिए आसक्ति पैदा नहीं होगी, फिर आपको जो खाना भी प्रेजेंट किया जाएगा जो हेल्थ के लिए आवश्यक है वो आप खाएंगे। शायद आपको पता हो एक बार हमारी बॉडी कीमत कितनी है, हमारी जो बॉडी है उसकी कीमत कितनी है पता आपको? 220 करोड़ है ना। एक बार इसकी यूएसए में कीमत लगाई गई बॉडी की, तो उसकी $50 मिलियन बॉडी कीमत, क्योंकि हमारी एक इंसान की बॉडी से 10-15 लोगों को हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट दे सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट दे सकते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट दे सकते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं हमारी बॉडी से। तो हमारी बॉडी बहुत कीमती है। यस, तो आप सभी कौन है? अरबपति, अरबपति। 220 करोड़ की बॉडी है आपके पास, सब कौन हो गए? तो आज से अपने आप गरीब नहीं बोलना है ना। तरुण भाई कितने पैसे हैं आपके पास? 220 करोड़ तो आपके पास अभी है ना, घर में नहीं, बैंक में नहीं। हाँ, आपके पास सदा ही है 220 करोड़ रुपए ना। तो 220 करोड़ की गाड़ी है, और इतनी अच्छी गाड़ी है, मर्सिडीज की कीमत भी 30-40-50 लाख होती है, और आपकी गाड़ी कीमत 220 करोड़ है, और इसको आपको चलाना है। चलाने के लिए क्या डालना चाहिए इसमें? मिट्टी के तेल से चलानी चाहिए ना? नहीं, गासलेट से चलानी चाहिए नहीं? या बहुत अच्छे रिफाइंड पेट्रोल से चलानी चाहिए, अनलेडेड पेट्रोल आजकल स्पीड आता है, कई नाम से आता है स्पीड, और दूसरे नाम से क्या आता है? स्पीड है, और एक दूसरा कौन सा है? पावर है ना। तो अच्छे अच्छे पेट्रोल जो स्पेशल आते हैं उनसे चलाना चाहिए ना। और ये जो आप खाते हैं ना, पराठा, पकौड़ा, समोसा, मिठाई, आइसक्रीम, और क्या क्या चीजें होती हैं अभी अनिल भाई, कौन सी चीजें होती हैं? पिज्जा, हमबर्गर, हाँ जी, ये सब गासलेट है, मिट्टी का तेल। और मिट्टी का तेल इसमें डालो और आप, फिर आपको मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चले, स्पीड से चले, चलेगी? धुआं देगी सिर्फ, है ना, धुआं देगी और फिर बंद हो जाएगी और आवाज करेगी जोर जोर से, जैसे आपकी बेबी गाड़ी चलती है ना, आवाज करती है ना, आवाज करती है, धुआं देती है और बंद हो जाती है। मेरे से चला नहीं जाता है, मेरी तो टांगों में दर्द हो रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है ना, मेरा तो सांस फूलता है, चलता हूं तो तकलीफ होती है, घबराहट होती है ना, ये क्या चीज है? कैसे गाड़ी खराब की आपने, नरसैया जी, डॉक्टर नरसैया जी, गाड़ी कैसे खराब की? घासलेट डाल डाल के, है ना। पेट्रोल की गाड़ी को आपने किसे चलाया है? मिट्टी के तेल डाल के चलाया, और फिर कहते हैं हमारी गाड़ी खराब हो गई। किसका कसूर है? तो ये तो बॉडी का पेट्रोल तो गलत डाला ही, किंतु आत्मा जो आत्मा है, आत्मा का पेट्रोल भी गलत डाला है। आत्मा का पेट्रोल कौन सा है? शुद्ध विचार, श्रेष्ठ विचार, अच्छे विचार। और आपने कौन कौन से विचार किए? क्रोध के विचार है ना, जल्दी के विचार, चिंता के विचार, गुस्से और उदासी के विचार, दूसरों के ईर्ष्या के विचार, नफरत के विचार, नहीं? तो कैसा भोजन दिया? आत्मा का भोजन कैसा दिया? आत्मा का भोजन क्या? विचार है ना। थॉट्स इज द फूड ऑफ सोल। तो आपने आत्मा का भोजन कैसा खिलाया? नेगेटिव, सड़ा हुआ भोजन, तला हुआ। ये जो विचार होते हैं ना, ये जो जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी के विचार कैसे विचार होते हैं? तले हुए विचार, सड़े हुए विचार। तो सड़ा हुआ खाना आपने आत्मा को दिया, तला हुआ खाना आप आत्मा को दिया, और बॉडी को भी वही दिया। सड़ा हुआ, सड़ा हुआ माना बोतलों में रखा हुआ खाना है ना, बोतलों में पैक्ड आता ना, जैम्स खिलाए, इतना जाने क्या क्या खिलाया, और फिर कहते हो हमारी बॉडी चलती नहीं है ना, हमारी टांगे नहीं चलती। वशिष्ठ जी, गाड़ी चलती नहीं है ना, गाड़ी को मर्सिडीज को बैल लगाना पड़ता आगे, है ना, मर्सिडीज को बैल से चला रहे हैं ना, नहीं बैल से चला रहे, लाठी लेके चलाना माना क्या? लाठी लेके चला रहे हैं तो बैल से चला रहे हैं ना, बैल लगा करके चला रहे हैं। लकड़ी जिसमें जान भी नहीं है उसके सहारे से अपनी बॉडी को चला रहे हैं, लकड़ी के सहारे से। कितनी दया की बात है ना। तो भगवान रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। कहते ना, भगवान तुमने ऐसा क्यों दुख दुख मेरे को क्यों दिया? भगवान ने दिया क्या? किसने दिया? डॉक्टर शारदा, किसने दुख दिया बताइए? किसने दुख दिया आपको? आपकी आर्टरीज किसने ब्लॉक की? कोलेस्ट्रॉल ने की। कोलेस्ट्रॉल कहां से आया? अपने आप अंदर चला गया। फूड से खाया ना, फूड तो आपने ही खाया ना, गलत फूड। आई टोल्ड यू दैट, अभी मैंने, आप शायद बीच में चले गए थे, 25% कोलेस्ट्रॉल हम खाने में खाते हैं, 75% लिवर में बनता है। वो बनता मन के हिसाब से, जल्दी चिंता गुस्सा किया उदासी किया तो बैड कोलेस्ट्रॉल बना, और अच्छा विचार किए शांत रहे खुश रहे संतुष्ट रहे तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बना। और एंडोथेलियम डैमेज कैसे हुई? हमारे विचारों से हुई, गलत फूड से हुई, वो भी उसी से डैमेज। दो ही चीजें डैमेज करने वाली हैं, फूड और मन। और मन और फूड ही कहते हैं मन और अन्न, मन और अन्न, ये दो चीजों से बीमारी होती है, और मन और अन्न से ही दोनों चीजें ठीक होती हैं। तो क्या बदलना पड़ेगा? अपना मन और अन्न। ठीक है, पक्का बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? या आइसक्रीम आज दिन में खिलाएं आपको? कुछ खिलाएं, पकोड़ा समोसा कुछ बनाए, आज स्पेशल बनवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर और इच्छा हो ब्लॉक करने की तो हम बनवा देते हैं, ऐसे कुछ नहीं। तरुण भाई, एनफ इज एनफ, नहीं तो कुछ और बनवा देते हैं, कुछ रसगुल्ला, गुलाब जामुन बनवाए, गुलाब जामुन तो हम अभी कहेंगे तो दोपहर तक बन जाए, 12 बजे तक, 1 बजे तक बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, गरम गरम खिलाएंगे फिर। अगर हम आपको एक चीज दें, आपको बर्फी बहुत अच्छी लगती है, आपको बर्फी होती ना खोए की बर्फी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बचपन से स्वाद है खाने का, किंतु आपको आपके सामने वो बर्फी प्रेजेंट की प्लेट में रख के बर्फी आपके स्वाद की बढ़िया बर्फी, एक काजू की बर्फी उस पे चांदी का वर्क लगा हुआ है ना, कि तो कान में आके जैसे खाने लगे ना आप, तो कान में का भी थोड़ा सा इसमें जहर है, थोड़ा सा, तो क्या होगा आपको? थोड़ा सा जहर है, थोड़ा इशारा किया कान में, तो क्या करेंगे आप? फिर भी खाएंगे ना? नहीं खाएंगे क्या? हमारी फेवरेट चीज है ना, नहीं फेवरेट है, भले जहर है तो क्या हो गया, पर हमारी फेवरेट चीज तो खाएंगे ना हम? नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, थोड़ा सा जहर है, पूरा नहीं मरेंगे, थोड़ा मरेंगे, ये भी गारंटी है, पूरा नहीं मरेंगे, थोड़ा मरेंगे। अच्छा बैठे बैठे बताता हूं। हाँ जी, तो इसलिए आपको मैंने बता दिया, जो आपको अच्छा लगता है ना उसमें जहर है, ठीक है, दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल एंड दैट ब्लॉक्स योर आर्टरीज। और लाइफ, ऑक्सीजन इज लाइफ, और ऑक्सीजन किसके थ्रू जाती है? ब्लड के थ्रू, और आप उस ब्लड के फ्लो में बाधा बन रहे हैं। बताऊंगा। हाँ जी, आई टेल यू ऑल दोस थिंग्स। तो आप ये समझ गए, ये बात नहीं समझे? हमें जो है टोटली इस बात को समझना होगा कि हमारी जो चॉइस क्या है ना, उस चॉइस के हिसाब से बीमारी आई, तो चॉइस अपनी चेंज करनी पड़ेगी ना? नहीं करनी पड़ेगी, चॉइस चेंज करनी पड़ेगी तो हम ठीक हो जाएंगे। तो आज से हम सभी दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि चॉइस चेंज करेंगे। अब हम वो खाएंगे, क्योंकि ये जो हमने अब तक खाया वो जहर खाया है, इट हैज ब्लॉक्ड अवर आर्टरीज, हमने खुद अपने अंगों को लाइफ देनी बंद कर दी, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, जो ब्लड जाता था हर नसों में, हार्ट की दीवारों में, पैरों की दीवारों में, पैरों की मसल्स में, पैरों की सेल्स को, हाथों की सेल्स को, ब्रेन की सेल्स को, हमने खुद खाली हार्ट की आर्टरी ब्लॉक नहीं हुई है, हर जगह की आर्टरीज में हमने कोलेस्ट्रॉल जमा किया है। आज दिमाग में से बातें भूल रही हैं, क्यों भूल रही हैं? क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो गया, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो क्या दिमाग की सेल्स सोच नहीं पा रही हैं? हाथों में दर्द क्यों हो रहा है? ब्लड फ्लो कम हो गया है। पैरों में दर्द क्यों हो रहा है? ब्लड फ्लो कम हो गया है। किडनी पूरा काम क्यों नहीं कर रही है? ब्लड फ्लो कम हो गया है। आंखों से पूरा दिख, आंख हमारा जो ये जो लेंस ब्लॉक होती है तो ना, हमें को ये जो होता है कैटरेक्ट होता है, कैटरेक्ट भी क्यों होता है? ये हमारा लेंस ओपेक क्यों हो जाता है? दिखाई देना कम हो क्यों हो जाता है? ब्लड फ्लो कम हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं प्रॉपर। अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिले तो हमारे कभी भी हमको कैटरेक्ट नहीं हो सकता है। तो हमारी जितनी बीमारियां हैं वो सारी सारी कौन पैदा करने वाला है? हमारे घर वाले, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी, कौन, हरियाणा वालों के लिए बंसीलाल, या कौन था वो, अभी कौन मिनिस्टर है वहां पर, हुड्डा, सिर्फ हम और हम। बदलना किसको है? गवर्नमेंट को बदलना है, बीवी को बदलना है, बच्चों को बदलना है, पति को बदलना है, किसको बदलना है? पति को बदलना है, किसको बदलना है? खुद को बदलना है। कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, यह पक्का करना है कि मैं खुद अपनी बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल हूं। और जब यह बात हमें समझ में आ गई तो हमें यह बात बड़ा क्लियर है कि मुझे अपने आप को बदलना है, इसलिए हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो रही। नेक्स्ट स्लाइड। और इलाज क्या? एंजियोप्लास्टी। ये ब्लॉक हो गया, इसमें गाइड वायर डाला, बैलून डाला, नेक्स्ट स्लाइड, बैलून को इन्फ्लेट कर दिया और ये ब्लॉक खुल गया, है ना। इसे कहते हैं एंजियोप्लास्टी, इसको बैलून एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और ये जो है एंजियोप्लास्टी जो हमने की, इसमें देखने में आया 50% केसेज विद इन 6 मंथ दोबारा ब्लॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसको कम करने के लिए स्टेंट डाले गए, स्टेंट माना एक तरह की स्प्रिंग लाई जाती है स्टील की या दूसरी मेटल्स की भी, तो वो बैलून में डाल करके इसको इन्फ्लेट कर देते हैं तो ये स्प्रिंग यहां सेट हो जाता है। इससे क्या हुआ, 10% कम हो गया चांस ब्लॉक होने का, मतलब पहले 40-50% था, अभी 30-40% रह गया। और आजकल ड्रग इरिटिंग स्टेंट बनाए गए, उनपे दवाई लगा दी गई स्टेंट के ऊपर ताकि ये दोबारा से ब्लॉक ना हो। किंतु इसमें क्या खतरा हुआ, ये ड्रग इरिटिंग स्टेंट जो थे DES जिसे कहते हैं, इसमें एक स्पेशल खतरा अभी बाद में 2 साल यूज करने के बाद पता लगा कि इन लोगों को अचानक कभी भी अचानक सोते सोते भी, कभी 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद भी अचानक इनके अंदर क्लॉट बन जाता है, ब्लड क्लॉट, उसे कहते हैं इंस्टेंट थ्रोम्बोसिस, और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो अभी क्या किया गया, थोड़े दिन के लिए अभी लास्ट ईयर से इनका DES को रोक दिया गया है, DES का यूज रोक दिया गया है। उसको FDA अभी दोबारा रिसर्च करा रहे हैं इसके ऊपर कुछ चेंजेस करके, कि जो इंस्टेंट थ्रोम्बोसिस हो रहा है ये बहुत अनएक्सेप्टेबल लिमिट्स तक पहुंच गया था, इसलिए अब कुछ समय के लिए रोक दिया गया DES को यूज करना। हालांकि भारत में कुछ लोग अभी भी यूज कर रहे हैं, परंतु ये यूज करना फिलहाल FDA ने रोका हुआ है कि खतरनाक है। क्लॉट बनना अलग बात है, या स्टेंट में थ्रोम्बोसिस बन जाना वो धीरे धीरे बनता है, उसका इतना खतरा नहीं कि तो अचानक रात में रात में ब्लॉक बन जाए, क्लॉट बन जाए, अचानक आदमी सोते सोते मर जाए, तो अनएक्सेप्टेबल है जी। नहीं, पर नुकसानदायक है, DES नुकसानदायक है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। और बाईपास क्या है, ब्लॉक वही है किंतु तो ब्लॉक को बाईपास कर दिया गया है, अंदर से आर्टरी लेकर के या वेन्स पैर से काट करके, हाथ से आर्टरी काट करके यहां से बड़ी आर्टरी से आगे ब्लॉक के आगे जोड़ देते हैं, तो इसको हम कहते हैं बाईपास सर्जरी, ब्लॉक वही रहता है। तो ये एंजियोप्लास्टी भी देखिए दोबारा ब्लॉक हो जाती है, ये स्टेंट है देख रहे हैं, और देखिए ये भी ब्लॉक हो गई है, और बाईपास भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो बाईपास इज ओनली टाइम पास, एंजियोप्लास्टी इज ऑल्सो टाइम पास, ठीक है। तो ये ऐसा ही जैसे एक पेड़ को ऊपर से काट देना, एक पेड़ बड़ा हो गया, उसके ऊपर से कुछ डालियां काट दी गई, फिर वापस क्या होगा, पेड़ हवा लगेगी, पानी लगेगा, तो फिर दोबारा बड़ा हो जाएगा। तो इट डज नॉट ट्रीट द रूट कॉज, इसलिए हमको दोबारा से एंजियोप्लास्टी, दोबारा से बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है, और एक तरह का पेलेटिव इफेक्ट है। और ये जो इलाज, जो आप यहां जिस इलाज के लिए आए, ये क्या इलाज है, इट ट्रीट्स द रूट कॉज। हम पेड़ को कुछ नहीं कहते हैं, हम क्या करते हैं पेड़ के नीचे जाके, जमीन के नीचे जाके उसकी जड़ को ही काट के बाहर निकाल देते हैं। तो जड़ को काट के बाहर निकाल दे तो क्या होगा, पेड़ का क्या होगा? अपने आप आपने जड़ काट के बाहर निकाल दी, पेड़ खड़ा हुआ है तो क्या होगा, पेड़ क्या होगा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये है, इट ट्रीट्स द रूट कॉज। और आज दुनिया में क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर ट्रीटिंग ओनली दी दैट इज ओनली पेलिएशन, राइट। तो ये ट्रीटमेंट जो है, ये ट्रीटमेंट अपने आप में इट ट्रीट्स द एड्रेस इज द रूट कॉज। अगर आपने बाईपास करा लिया है, एंजियोप्लास्टी करा ली है, तो भी ये प्रोग्राम आप फॉलो कर रहे हैं तो भी आपको क्या होगा, फिर दोबारा कभी जीवन में आपको बाईपास एंजियोप्लास्टी नहीं करानी पड़ेगी, क्योंकि आपने रूट को ही खत्म कर दिया। हम लोग बाईपास एंजियोप्लास्टी खिलाफ नहीं है, हम लोग कहते हैं नहीं, आप भले बाईपास एंजियोप्लास्टी करा लिया है किंतु वो गारंटी नहीं है कि उससे दोबारा तकलीफ होगी कि नहीं होगी। फिर भी तकलीफ होगी तो दोबारा तकलीफ ना हो, इसके लिए आप इस प्रोग्राम को जरूर फॉलो करें ताकि आपको बीमारी कभी दोबारा ना हो। और नहीं कराया तो कोई हर्जा नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इसे देखने में आया, रिसर्च हुई है, 22 साल पेशेंट्स को फॉलो किया गया, ये पेडुजी एट ऑल की स्टडी है, सर्कुलेशन में पब्लिश हुई थी। ये देखने में गया जिन लोगों ने बाईपास कराया, जिन लोगों ने बाईपास नहीं कराया, जिन लोग मेडिकल ट्रीटमेंट पे रहे, और ये है मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट। देखिए अगर 22 साल जो लोग फॉलो किया तो 22 साल के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट 25% लोग जिंदा रहे, 75% लोग मर गए 22 साल में, और जिन्होंने बाईपास कराया था उसमें 100 में से 20 ही लोग जिंदा रहे। और अगर हम देखें हार्ट अटैक कितने को हुए, यहां पर 57% लोगों को हार्ट अटैक हुए, मतलब जो फ्री ऑफ MI 57% लोग थे जिनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, और यहां देखें तो 41% लोग थे जिनको हार्ट अटैक नहीं हुआ। तो अगर लंबा समय देखें तो बाईपास वाले पेशेंट ज्यादा सफर करते हैं, मरते भी ज्यादा हैं, और जो बाईपास नहीं कराते हैं उनको फायदा रहता है लंबा लॉन्ग रन। ये 22 साल की स्टडी है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, अगर ये बताया गया है, ग्रीन वाली लाइन है ये है मेडिकल ट्रीटमेंट वाली, रेड वाले बाईपास वाले। तो अगर देखें पहले 3 साल तो मेडिकल ट्रीटमेंट वाले अच्छे रहते हैं, क्योंकि बाईपास करने के बाद छाती में दर्द होना, छाती भारी रहना 3 साल तक चलता ही रहता है। फिर 3 से 9 साल तक दोनों बराबर रहते हैं, कि तो 9 साल होने के बाद फिर बाईपास वालों को फिर तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। और ओवरऑल मेडिकल ट्रीटमेंट वाले अच्छे रहते हैं, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट वाले अधिकतर केयरफुल रहते हैं खान पान के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, सब चीजों के बारे में, और बाईपास वाले अलबेले हो जाते हैं। बाईपास करा लिए ना तो अलबेले हो जाते हैं, तो इसलिए उनको ज्यादा तकलीफ होती है, और बिना बाईपास वाले ज्यादा अच्छा लंबा समय चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और एक ही बात, ये लास्ट स्लाइड आपको ये दिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें बताया गया है, अभी तक ऐसे समझा जाता था कि ये जो तकलीफ है, ये जो हम बाईपास कर रहे हैं, एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं लोग, इसके बाद भी तकलीफें क्यों हो रही हैं, लोगों को फायदा क्यों नहीं हो रहा है? तो अभी क्या है, अभी स्पेशली भारत में थोड़ा कम है, विदेशों में हर उसमें शहर में एंजियोग्राफी की फैसिलिटी अवेलेबल है, छोटे छोटे शहर में भी अवेलेबल है, और वहां हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज। तो जैसे ही आपको अगर जैसे हार्ट अटैक होता है तो आप फोन कर देंगे तो आपके एरिया में हेलीकॉप्टर आ जाएगा, हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस निकलेगी, एम्बुलेंस लेकर के तुरंत आपको हेलीकॉप्टर में ले जाएगी, और हेलीकॉप्टर में ही एंजियोग्राफी कर दी जाती है। हेलीकॉप्टर में पूरी आईसीयू बनी होती है, सीसीयू बनी होती है, बाईपास उसमें एंजियोप्लास्टी की सुविधा भी उसके अंदर ही होती है। तो ये देखने में आया कि मान लीजिए आपके 6 ब्लॉक हैं आपकी आर्टरी में, 6 या 5 ब्लॉक हैं, तो अभी आपको हार्ट अटैक किस किस कारण से आया, कौन सा ब्लॉक क्रैक हुआ, किससे आपको हार्ट अटैक हुआ, ये हम तुरंत पता लगा सकते हैं। तो ये रिसर्च की गई डिफरेंट टाइम्स पर, ये देखने में आया ओवरऑल अगर हम देखें तो 68% जो हार्ट अटैक होते हैं, जो प्लाक रप्चर होते हैं, प्लाक टूट क्रैक होते हैं, वो 50% से कम होते हैं, जो 50% से कम ब्लॉक होते हैं वो क्रैक होते हैं, और लगभग 18% जो ब्लॉक रप्चर होते हैं वो 50 से 70% वाले होते हैं। और 70% से अधिक वाले जो ब्लॉक रप्चर होते हैं वो सिर्फ 14% केसेस में होते हैं। अर्थात आपने अगर बाईपास एंजियोप्लास्टी कराई है तो सिर्फ आपको अभी भी 86% चांस है, 86% चांस है आपको हार्ट अटैक आने का, आपका प्लाक रप्चर हो सकता है। और अगर आपको 70% से अधिक ब्लॉक है तो आपको सिर्फ 14% चांस है हार्ट अटैक आने का। तो अगर आपको ब्लॉक आपके 80-90% है तो आप अच्छे हैं, आपको हार्ट अटैक आएगा ही नहीं, यू आर ऑलमोस्ट श्योर। अगर 100% ब्लॉक है तो एकदम पक्का है आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ठीक है, खुशी की बात है। मोर द ब्लॉकेज लेस चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, लेसर द ब्लॉकेज मोर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, क्या समझे सिंह साहब, समझ में आई आपको ये बात? ये उल्टी बात है ना, वैसे दुनिया के हिसाब से उल्टी बात है ना अविनाश भाई, उल्टी बात है ना। अब जैसे आपकी आर्टरी 80% बंद है तो कम चांस है, बहुत कम चांस है हार्ट अटैक आने के, बहुत कम चांस है। अगर ये 50-60% ब्लॉक होता तो ज्यादा चांस होते हार्ट अटैक आने के, 40% ब्लॉक होता तो चांस ज्यादा होते हार्ट अटैक आने के। तो यू शुड फील योरसेल्फ लकी, क्या ख्याल है? यस, समझ में आई ये बात आपको या ऊपर से गई? हाँ जी, हाँ नहीं, मतलब मैं जो बता रहा हूं, मान लीजिए आपके आपको तकलीफ है, आपके 5 ब्लॉक हैं, एक 90%, एक 80%, एक 100% और 2 ब्लॉक हैं, एक 60%, एक 50%। आपने बाईपास करने के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या करेगा, 100% वाली आर्टरी को बाईपास कर देगा, 90 वाली को कर देगा और 70 वाली को भी कर देगा, ठीक है, किंतु 60 वाली और 50 वाली को छोड़ देगा, उसको बाईपास नहीं करेंगे ना उसकी एंजियोप्लास्टी करेंगे। तो क्या होगा, अब आपने बाईपास करा लिया किंतु जो 2 ब्लॉक रह गए जिसकी आपने जिसका बाईपास नहीं किया गया, वो ब्लॉक क्या करेंगे, कभी भी रप्चर हो सकते हैं, रप्चर होकर आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। हमेशा जब भी आपकी आर्टरी में 100% 90% ब्लॉक होते हैं, साथ में कहीं ना कहीं छोटे छोटे ब्लॉक 30-40% वाले ब्लॉक होते ही हैं, उसको कमेंट नहीं करते हैं, उसी डॉक्टर्स को कहते नहीं, लिखते नहीं है, तो दे रप्चर। वो क्यों रप्चर होते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, जितने छोटे ब्लॉक होते हैं ना उनमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, दे आर फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज नए नए ब्लॉक डेवलप हो रहे ना, और जो जो ब्लॉक पुराना होता जाता है 70-80-90% वो ज्यादा हार्ड होता जाता है, कैल्शियम से भरता जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता किंतु उसमें कैल्शियम भरता जाता है और उस कैल्शियम की वजह से वो ब्लॉक रहता है, उसलिए वो क्रैक होने के चांस खत्म हो जाए, वो स्टेबल हो जाता है। और जो 30-40% वाला ब्लॉक होता है वो अधिकतर अनस्टेबल, माना उसमें क्या भरा होता है, अंदर में और यहां पर एक कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है, नॉर्मली एक आर्ट ब्लॉक में किसी भी ब्लॉक में 50-80% क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ होता है और बाकी जो एरिया होता है इसमें फाइब्रस टिश्यू होता है, फाइब्रस में ना हार्ड पार्ट होता है, ये जो काले वाला पार्ट देख रहे हैं ये हार्ड पार्ट है, फाइब्रस पार्ट है, और इन ब्लू वाला देख रहे हैं ये कोलेस्ट्रॉल है। तो छोटे जो ब्लॉक होते हैं उसमें अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है और फाइब्रस पार्ट कम होता है, मतलब फाइब्रस पार्ट पतला, ये जो इसको बोलते हैं फाइब्रस कैप, वो बहुत पतली होती है। तो जब भी कभी जब हम जल्दी चिंता गुस्सा करते हैं या उदास होते हैं और एक क्रिटिकल लेवल से अधिक हो जाता है तो यहां से आर्टरी यूजली क्रैक हो जाती है, ये क्रैक हो गई, और क्रैक होकर के क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल जो है, क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल इसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलने लगता है, और ये कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलने से इसके आसपास खून जमना शुरू हो जाता है। यहां इसको इसको प्लग करने के लिए खून ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, तो जितना अधिक कोलेस्ट्रॉल अंदर होगा उतना ही प्लाक अधिक, इसको प्लाक भी कहते हैं, ब्लॉक भी कहते हैं, प्लाक PLAQUE प्लाक। तो जितना अधिक कोलेस्ट्रॉल होता है उतना अधिक प्लाक अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल माना कभी भी क्रैक हो सकता है, और स्टेबल माना वो क्रैक नहीं होगा, राइट। तो ये प्लाक जैसे क्रैक होगा तो क्या होगा, क्लॉट बन जाएगा, और जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे ब्लॉक बढ़ता जाता है, तो इसके अंदर यहां पर ये जो एरिया जो ब्लू वाला ना, ये सारा सारा यहां पे कैल्शियम जमता जाता है और ये प्लाक हार्ड होता जाता है। तो अधिकतर जो 80% वाले ब्लॉक होते हैं, 90% वाले, वो अधिकतर हार्ड हो जाते हैं, और ये सारे ऐसे कैसे से पूरा का पूरा कैल्शियम जम जाता है। देख रहे हैं कैल्शियम जम गया, अभी हार्ड हो गया, अब ये क्रैक नहीं होगा, क्योंकि पहले क्रैक क्यों हो रहा था, अंदर से सॉफ्ट था बाहर से हार्ड था, तो सॉफ्ट कंसिस्टेंसी अलग होगी ना, अंदर में ग्रुवल भरा हुआ है और बाहर से हार्ड है। जब भी गुस्सा किया चिंता की तो आर्टरी अंदर ऐसे ऐसे होती है, कभी बंद होती कभी खुलती, कभी बंद होती कभी खुलती, तो क्रैक हो जाएगी। और सारी सारी कंसिस्टेंसी एक जैसी होगी तो क्या होगा, भले ऐसे ऐसे हो तो भी क्रैक नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको समझ आ गया होगा, मैं समझता हूं कि हमारे 80% जो ब्लॉक्स होते हैं, एक मिनट वो माइंड बॉडी की लास्ट स्लाइड दिखा दो, 5 मिनट दिखा देता हूं उनको, ताकि ओपनिंग माइंड करेंगे ना अभी, तो थोड़ा उस बात का थोड़ा क्लियर हो जाएगा। माइंड बॉडी का दिखा दो सर, तो ये बात समझ में आ गई। तो हमारे 86% जो हार्ट अटैक्स होते हैं, 100 में से 86 हार्ट अटैक कब होते हैं, जब हमारी आर्टरी का ब्लॉकेज 70 से कम होता है। क्यों, क्योंकि वो ब्लॉक अधिकतर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल से भरे हुए होते हैं, उनमें 60-70-80% तक ब्लॉक कोलेस्ट्रॉल भरा रहता है, और इसकी बजाय जो ब्लॉक हार्ड हो गए 80-90% वाले हो गए, उनमें अधिकतर ज्यादा मात्रा में कैल्शियम जमा होने से वो प्लाक स्टेबल हो जाते हैं, और उनमें चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बहुत कम होते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये ब्लॉक यहां रप्चर करने के बजाय रप्चर अंदर भी हो जाते हैं, अंदर से ही अंदर ही रप्चर हो जाता है, अंदर ही खून फट जाती है, अंदर की नस जहां प्लाक ही फट जाता है अंदर से, तो अंदर ही हेमरेज, अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, बाहर नहीं इकट्ठा होता, इसके अंदर ही ब्लड इकट्ठा होकर अचानक एक ब्लॉक जो 30% था वो अचानक 80% हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, राइट, समझ में आई ये बात आपको। और आज जो हार्ट की बीमारी जल्दी उम्र में आ रही है, उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि 30% वाला ब्लॉक भी रप्चर हो रहा है। क्यों रप्चर हो रहा है, क्योंकि आज आदमी को डेडलाइंस है, यंग आदमी को 23-24-25 साल का आदमी है, यंग आदमी है, किसी अच्छी कंपनी में ज्वाइन करता है, उसको डेडलाइंस दे दी जाती है, आपको ये काम करना है, इतने समय में करना है, एम्बिशंस बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसलिए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उस चक्कर में आकर के अपने आप को वो डेडलाइंस को पूरा करने के वास्ते जल्दी चिंता गुस्सा उदासी से भर जाते हैं, अपने मन की बातें कह भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको जो आपके बॉसेस हैं वो आपको क्या करते हैं, जो आपका जॉब है वो जॉब टोटली वर्क ओरिएंटेड है, उनको आपसे मतलब नहीं है, आपकी हेल्थ से मतलब नहीं है, सिर्फ दे वॉन्ट आउटपुट, राइट, तो वो क्या करेंगे आपको, तो आपके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, और एक क्रैक बस्ट हो जाते हैं, ब्लॉक्स बस्ट हो जाते हैं, और 30-40% ब्लॉक होने के बावजूद भी आपको मैसिव हार्ट अटैक हो जाता है, और आपकी पंपिंग पावर जो 60% थी नॉर्मली से घटके सिर्फ 25-20% रह जाती है 25 साल की उम्र में। और एंजियोग्राफी कराते हैं तो ब्लॉक कितना निकलता है, 25%, 30%, 35%, है ना, तो इस तरह की हालत आज बहुत ज्यादा हो रही है सोसाइटी में, उसका कारण यही है, अनस्टेबल प्लाक्स। एंडोथेलियम इंजर हो जाती है, और हमारे फूड गलत होता है, जो ये जितने भी आईटी में काम करते हैं ना, उनके फूड गलत है, घर में तो जाता ही नहीं है, वही रेस्टोरेंट में हमबर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, दो चार कोल्ड ड्रिंक पी लिया, चलो हो गया, डिनर हो गया, लंच हो गया, यही डिनर लंच होता है उनका, क्योंकि उनको लेट नाइट्स तक काम करना पड़ता है, घर जाने का मौका नहीं मिलता है, कई बार जाएंगे तो बहुत लेट जाएंगे, ड्यूटी आवर्स बहुत गलत होते हैं, तो इसलिए उनको अर्ली एज में हार्ट अटैक्स, दैट इज द रीजन। समझ में आई बात आपको यार? पक्का क्लियर हो गया, थोड़ा क्लियर हुआ? तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे बताइए? और प्लाक स्टेबल कैसे करेंगे? अब ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में क्या होता है, इस प्रोग्राम में तो बहुत सहज है, अगर आपका ब्लॉक 80-90% है तो वो तो तुरंत आप जैसे रिलैक्स होंगे ना तो नेचुरल बाईपास हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे रिलैक्स हुए कोलेटरल खुल गए तो नेचुरल बाईपास तो आते ही हो गया, समझो जैसे। और जो आपके 50-60-70% वाले ब्लॉक हैं उनमें से कोलेस्ट्रॉल जल्द, क्योंकि हम आपको डाइट कैसे दे रहे हैं, ऑलमोस्ट जिसमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, गुड कोलेस्ट्रॉल दे रहे हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल दे ही नहीं रहे हैं हम आपको। और मन से आप क्या कर रहे हैं अभी यहां पर आकर के, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मरने वाला हूं ही नहीं, ये फीलिंग आ रही ना अंदर से, तो क्या हो रहा है, अंदर से शांति भी आ रही है, प्रेम भी, खुशी भी आ रही है, तो क्या हो रहा है, लीवर क्या बना रहा है, गुड कोलेस्ट्रॉल बना रहा है और क्लॉट बस्टर बना रहा है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो गया, तो क्या होगा, अब गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, जहां जहां बैड कोलेस्ट्रॉल जमा है उसको बाहर निकालेगा, सफाई करेगा, तो क्या होगा, जो आपके 50-60% वाले ब्लॉक क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी स्टेबल हो जाएंगे, अभी अनस्टेबल हैं किंतु फिर क्या हो जाएंगे, उनमें सारा एलडीएल निकल जाएगा बाहर, तो वो स्टेबल हो जाएंगे, खाली हार्ड पार्ट बचेगा, हार्ड पार्ट क्रैक होगा ही नहीं, तो स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे तो हार्ट अटैक का चांस खत्म हो गया। और जो सीवियर, जो बड़े बड़े ब्लॉक हैं, वो ब्लॉक भी क्या होंगे, वो भी घटने शुरू हो जाएंगे, वो भी खुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, नहीं समझ में आई आपको बात, कैसे हमारे ब्लॉक होते हैं और क्यों होते हैं, किस तरह से होते हैं। चलो एक बात और ले लें आपसे लास्ट में, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेशन है ओपनिंग द माइंड, मन में जो हमारी नेगेटिव बातें हैं उनको साफ करना और पॉजिटिव बातों को रियलाइज करना। नेक्स्ट स्लाइड, ये स्लाइड हम ले लेते हैं, माइंड बॉडी रिलेशनशिप क्या है, मन क्या चीज है, मन के अंदर चार एस्पेक्ट होते हैं, मन जो है, मन वैसे तो फिजिकल मन तो नहीं, आपको पता ना मन फिजिकल नहीं है, ब्रेन फिजिकल है, ब्रेन का कितना वजन है बताओ, व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्रेन, 1200 ग्राम के आसपास होता है, 1100 से 1200 ग्राम, जो ब्रेन है ना हमारा वो लगभग 1200 ग्राम का ब्रेन होता है, ठीक है। और जो हमारा, और मन का कितना वजन है, कितना वजन है मन का, कितने ग्राम है बताओ हनुमेश भाई, मन का वजन कितना है, हाँ जी, लाइट, लाइट थोड़ी ना कोई, राजेंद्र सिंह कहां बैठा है, हाँ बताओ मन का वजन कितना है, कितना भी क्या, लोग तो कहते हैं मेरा मन बहुत भारी हो रहा है, नहीं बोलते आज मेरा मन बहुत भारी है, इतना भारी है कि चला भी नहीं जा रहा है ना, तो आप कह रहे हो वजन ही नहीं है मन का, तो नहीं है मन का वजन, हाँ यूनिट्स नहीं, तो भारी कैसे बोला, हाँ अंदाज से बोला, यस अविनाश, कितना वजन है मन का, कितने किलो का होता है, जिसका मन भारी होता है उसे उठा भी नहीं जाता है, मैं आप चला भी नहीं जाता है, अगर बॉडी भारी हो वो भी चल लेता है, किंतु मन भारी हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है, नहीं ऐसे। ओम प्रकाश जी क्या हाल है, कितना वजन है मन का, पहले कितना था, एक साल पहले कितना था, हाँ एक साल पहले कितना वजन था आपके मन का, पहले भारी था, तो पहले मन भारी था अभी मन हल्का हो गया है ना, तो मन का वजन जो है, मन के चार एस्पेक्ट होते हैं, उसे इंग्लिश में टीम कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, टीम, मन में चार बातें आती हैं, टीम माना, टी फॉर थॉट्स, ई फॉर इमोशंस, ए फॉर एटीट्यूड्स एंड एम फॉर मेमोरीज, थॉट्स माना विचार या संकल्प, इमोशंस माना भावना, ए माना एटीट्यूड माना वृत्ति, और एम माना मेमोरीज, मेमोरीज माना स्मृति। तो स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। जब भी हम नेगेटिव टीम करते हैं, नेगेटिव टीम मतलब नेगेटिव विचार, भावना, संकल्प या ये करते हैं, वृत्ति या स्मृति लेकर के आते हैं, तो हमारा हाइपोथैलेमस, यहां पर हाइपोथैलेमस है, यहां पर हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, यहां दो ब्रेन के हेमिस्फीयर्स है, राइट और लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट में जो भी क्रिया होती है, हाइपोथैलेमस इज लाइक वॉचडॉग। वॉचडॉग माना जैसे पहले हमने घर में एक कुत्ता रखते हैं ना, डॉग रखते हैं ना, तो डॉग क्या करता है, पहरेदारी करता है। कोई भी आदमी, गलत आदमी अंदर आए तो क्या करता है, बार्क करता है, भौंकता है ना। तो ऐसे ही मान लीजिए, अगर मेरे राइट लेफ्ट, राइट ब्रेन में, लेफ्ट ब्रेन में कोई भी गलत क्रिया होगी तो क्या होगा, वो वॉचडॉग उसको क्या करेगा, वॉचडॉग रिएक्शन करता है तुरंत। और वो हमारे दिमाग में क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस में ही क्या बनेंगे, ऐसे केमिकल बनते हैं जिनको हम न्यूरोपेप्टाइड्स कहते हैं। तो अगर हमारे ब्रेन में, दोनों हेमिस्फीयर्स में कोई भी गलत स्मृति, गलत वृत्ति, गलत भावना और गलत संकल्प आया, तो हमारे हाइपोथैलेमस से नेगेटिव केमिकल्स बनते हैं, इनको न्यूरोपेप्टाइड्स कहते हैं, और वो बॉडी के हर सेल के ऊपर जाते हैं, हर सेल पर उसके लिए रिसीविंग सेंटर्स बने हुए हैं, और उसके जाने से हमारे अंदर जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, सिंपैथेटिक मैंने कल बताया था, सिंपैथेटिक एक्टिविटी में ना हीटिंग सिस्टम, इमरजेंसी सिस्टम, और एक है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम जिसका अर्थ है कूलिंग सिस्टम। तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है और हमारे अंदर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, फीलिंग ऑफ दिस ईज, सैडनेस, लैक ऑफ एनर्जी, ये फील होता है। तो नेगेटिव विचार, भावना और संकल्प करने से क्या होता है, हमारे अंदर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स या बीमारी की फीलिंग या उदासी या शक्ति नहीं, ऐसा फील होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप अगर जैसे अपने ऑफिस में अभी भी गए हैं, अभी जाके बैठे हैं, ब्रेकफास्ट आपने अच्छा किया है, सब कुछ आप पावरफुल हैं, अच्छी स्थिति में हैं, और आपको बहुत सारे आज काम करने, बहुत सारी मीटिंग होने वाली हैं, बहुत जगह आपको अपने आपके मन में बहुत सारी उमंग उत्साह है कि आपको आज ये भी करना है, आज ये भी करना, आज ये भी करना, आज ये भी करना, आप एकदम एनर्जी से भरे हुए हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं। अचानक एक खबर आती है, टेलीफोन पे खबर आई कि आपके घर में आग लग गई है, या कोई ऐसी खबर आई कि आपका कोई बहुत ही नियर और डियर वन मर गया, तो क्या होता है, आप तो बहुत उमंग उत्साह में थे, यू आर बबलिंग विद एनर्जी, तो क्या होता है, अचानक क्या महसूस करते हैं, अंदर एकदम थक जाते हैं, अंदर से बहुत डर लगता है, बहुत घबराहट होती है, और अंदर से उदासी आ जाती है बहुत, और क्या होता है, अंदर से जैसे आपको खड़े रहने की ताकत भी देती नहीं है, लगता है मैं अभी गिर जाऊंगा, है ना, नहीं ऐसा होता, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ एक टेलीफोन आया, कुछ भी कुछ और नहीं हुआ है, किसी ने आपकी जेब नहीं काटी है, नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव विचार एक आया ना, टेलीफोन से क्या आया, नेगेटिव मैसेज आया है, आपके घर में ऐसा हो गया है, या आपके किसी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, या ऐसा कोई नियर एंड की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या होता है, आप इतना एकदम से हतोत्साहित हो जाते हैं, क्यों हुए, क्योंकि जैसे ही वो विचार आया या वो स्मृति आई, तो क्या होगा, आपके वो केमिकल हाइपोथैलेमस में बने न्यूरोपेप्टाइड्स और बॉडी के हर सेल पे चले गए, और बॉडी के हर सेल में उसने काम करना छोड़ दिया, एकदम क्या बोलते हैं, पेन डाउन स्ट्राइक, एकदम सडनली स्ट्राइक हो गई और सारा काम करना बंद हो गया, एनर्जी आनी बंद हो गई। जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छे मूड में हैं, बहुत सुबह सुबह बहुत अच्छे मूड में हैं, और आपको सामने को ऐसा व्यक्ति आए जिसके आप शक्ल लाइक नहीं करते हैं, तो क्या होता है, आपको ऐसी बात होती है ना, उसने कुछ कहा भी नहीं है आपको, आपका एकदम मूड ऑफ हो जाता है, कुछ भी काम करने को दिल नहीं करेगा। या ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल और दे दूं, आपको जैसे आप आपने जैसे मैं सुबह बता रहा था आपको, आपका हेल्थ चेकअप जैसे हुआ, आपकी टीएमटी पॉजिटिव आई, आपने एंजियोग्राफी कराई, एंजियोग्राफी करा के डॉक्टर ने कहा नहीं आप कल आप रिपोर्ट कल आप स्पोर्ट्स क्लब से जब आएंगे ना, आपने बताया मैं डोज स्पोर्ट्स क्लब जाता हूँ सुबह सुबह लॉन टेनिस खेलता हूँ, और आज कल सुबह सुबह स्पोर्ट्स क्लब से आते हुए आप अपनी रिपोर्ट कलेक्ट कर लेना। तो आप रिपोर्ट आप पहुंचे स्पोर्ट्स क्लब से, वहां पर लॉन टेनिस खेल के दो तीन सेट खेले और पहुंच रास्ते में डॉक्टर का क्लिनिक पड़ता है, तो डॉक्टर के पास पहुंच गए कि डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट दे दीजिए। डॉक्टर आपको देखता है, आप शॉर्ट आपने निक्कर पहनी हुई है और वो अपना पहना हुआ है और हाथ में रैकेट है, और आप जाते हो तो जाकर के डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता है, डॉक्टर आपको ऊपर से नीचे तक देखता है, पहले ऐसे कहता बैठ जाओ बैठ जाओ, है ना, कहता डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट दो, मुझे टाइम नहीं है, मुझे जल्दी भी ऑफिस जाना है। कहता नहीं नहीं आप बैठिए। तो कहता है अच्छा, बैठ जाता है। फिर डॉक्टर कहता है भाई आपको तो आप घर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं घर जा सकते हैं? आपकी तो कल एंजियोग्राफी जो की उसमें चार ब्लॉक है, एक 100% ब्लॉक है, एक 90% ब्लॉक है, एक 80% ब्लॉक है, एक 70% ब्लॉक है। कहता डॉक्टर साहब मेरी एंजियोग्राफी नहीं है, तो मैं तो देखो अभी लॉन टेनिस तीन सेट खेल के आ रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जरा भी तकलीफ नहीं है, ये किसी और की एंजियोग्राफी होगी, आपने गलत मेरी रिपोर्ट दे रहे। नहीं नहीं आप ही का नाम देखो, आप ही की एंजियोग्राफी आप ही का है, आप ही का है, देखो ये सीडी देख लीजिए, सीडी भी आप ही की है। तो डॉक्टर वो बार बार पेशेंट यही बोलता, नहीं डॉक्टर साहब मेरी ऐसी एंजियोग्राफी, मेरी ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तकलीफ नहीं है ये वाली, नहीं नहीं आप ही की है। अरे आपको नहीं पता आपकी ऐसी हालत है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं घर जाता हूँ, घर मुझे दे दो, मैं घर ले जाकर देखूंगा, चेक करूंगा, अपने डॉक्टर दिखाऊंगा, किसी दूसरे डॉक्टर से बात करूं। नहीं नहीं आपको अभी दाखिल होना पड़ेगा, कल आपका बाईपास होगा। अगर डॉक्टर साहब मुझे बाईपास की क्या बात करें, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। वो मानता नहीं है कि मेरे को तकलीफ है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, आई एम ओके। मैं तो चलो आपको भी दौड़ के दिखाऊं, आपसे भी आगे निकल जाऊंगा, मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं। तो डॉक्टर कहता है देखो आप मेरी बात समझो, अंदर टाइम बम रखा है, कभी फट जाएगा, ठीक है, आप इसलिए जिद ना करो, आप यहीं से टेलीफोन करो घर वालों को कि आपको आज अभी दाखिल हो रहा हूं मैं और आप यहां आ जाइए। वो कहता है नहीं नहीं डॉक्टर साहब मेरे को अच्छा घर तो जाने दो। कहता नहीं नहीं देखो देखो तुम्हें पता नहीं, कल तुम्हारा एक दोस्त था ना, जो तुम्हारा दोस्त था उसका भी हमने किया था ना एंजियोग्राफी तीन चार दिन पहले, उसको बोला था हमने आप अपना बाईपास करा लो, उसने कराया नहीं, देखो परसों मर भी गया। हाँ डॉक्टर साहब मर तो गया, सुट लगता है यार फिर मैं भी तो गया, मरने वाला नहीं हूं। तो अभी उसको क्या होता है, उसको छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है। कहते डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ हो रही है, जरा मैं लेट जाऊं क्या, दर्द हो रहा है ना मुझे, तो लेट जाऊं। अच्छा लेट जाओ नहीं, वो कैसे मतलब वो क्या हुआ उसको, वो ठीक ठाक अपने कमरे डॉक्टर के क्लिनिक में आया, ठीक ठाक आया था ना, डॉक्टर ने उसके अंदर नेगेटिव थॉट भर भर के, नेगेटिव थॉट से काम नहीं चला तो नेगेटिव इमोशंस भरी, फिर नेगेटिव इमोशन साथ में ये भरा तुम्हारे कितने बच्चा कितने कितने बच्चे हैं, क्या क्या करते हैं। डॉक्टर साहब एक मेडिकल में पढ़ रहा है, दो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अरे उनका क्या होगा, उनका अपना ध्यान नहीं, उनका तो ध्यान कर। फिर नेगेटिव इमोशन डाली, फिर नेगेटिव एटीट्यूड डाला, फिर उससे भी बात नहीं, मैंने तो नेगेटिव मेमोरी भी डाली कि तुम्हारा देखो दोस्त तो मर गया ना, देखो अभी तुम्हारा नंबर है। तो सब टीम नेगेटिव करके फिर क्या हुआ है ना, उसके अंदर क्या हुआ, उसके जो कोलेटर थे बंद हो गए, वो कोलेटर पर जिंदा था ना, कोलेटर के कारण उसको अंजाइना नहीं हो रहा था, अभी कोलेटर बंद हो गए, अंजाइना चालू हो गई है ना। तो उसको फाइट एंड फ्लाइट, तो उसको डर लगने, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स आ गई, फीलिंग ऑफ डिसईज, रियल वर्ड इज डिसईज नॉट डिजीज, लॉस ऑफ ईज, सैडनेस है ना, उदासी आ गई, और लैक ऑफ एनर्जी। अब उसके अंदर हिम्मत नहीं कि वो खड़ा भी रह सके, कहां तो लॉन टेनिस खेल के आ रहा था, अब कहता मुझे लेटना है नहीं। तो ये हालत होती है नेगेटिव, मतलब आपने अगर एक नेगेटिव विचार कर लिया, नेगेटिव बात को याद कर लिया, पुरानी बात भी भले हो, तो आपको उसका असर जरूर होगा, उसके असर से आप बच नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। नेगेटिव भावना मन में आ गई तो उसका असर आपके शरीर पे जरूर होगा, आपने नेगेटिव एटीट्यूड अपना लिया तो उसका असर आपके ऊपर नहीं हो, या हो नहीं सकता, होगा ही होगा, 100% होगा। और ऑन द अदर हैंड आपने अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मेमोरी ली, तो क्या होगा, आपकी सेल्स में, ब्रेन की और बॉडी सेल्स में एंडोर्फिन बनते हैं। एंडोर्फिन माना ऐसे केमिकल्स हैं जो कि नेचुरल पेन किलर्स हैं। आपको पता है ना मॉर्फिन जो होती है, मॉर्फिन क्या करती है, मॉर्फिन कैसे भी पेन को खत्म कर देती है। तो हमारी बॉडी में भी मॉर्फिन बनती है, अफीम कहते हैं जैसे अफीम, वो हमारी बॉडी में भी बनती है। तो वो अफीम हमारे अंदर कैसा काम करती है, कैसा काम करेगी, नेचुरल पेन किलर का, कोई कैसा भी पेन हो अपने आप ठीक हो जाता है। और फीलिंग और वेलबींग देती है। जो अफीमची होते हैं ना वो क्या करते हैं, नाली में पड़े होते हैं फिर भी क्या फील करते हैं, हम महल में हैं, है ना, हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत हल्की फीलिंग उनको होती है, बहुत लाइट फीलिंग होती है। तो ये नेचुरल फीलिंग जो हमारे अंदर जो नेचुरल निकलती ना, तो आपके अंदर जैसे इतना तो इतनी देर बैठने की आदत है क्या आपको, केजी के बच्चे बन के बैठने की आदत है क्लास में, आपके घर में जरा आपने घर में बैठ के दिखाओ इतनी देर, आप चुपचाप सुन के दिखाओ किसी को, सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, यस सराज सिंह साहब, घर में इतनी देर बैठ के सुन सकते हो आप किसी की, किसी को नहीं सुनोगे ना, कि तो कैसे वो पॉसिबल है, क्योंकि यहां पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव एटीट्यूड्स, पॉजिटिव मेमोरीज हैं। तो क्या हो रहा है,